بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہمارا تیسرا سیشن ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ فزکس کے اندر جو خدا تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا اس کو کانٹیسٹ کرتے ہوئے کیا کیا نئے آئیڈیا سامنے آئے ہیں. یعنی ایک تو ایتھیزم ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکی طور پر بایولوجی سے پیدا ہوا, ایولوشنری تھیوری سے, اور اس کے بعد دوسری قسم اس کی جو بالکل نئی ہے. یہ بالکل نئی اگر نہ بھی کہیں, اس کی جو روٹس ہیں وہ 1960s 1950s میں شروع ہو گئی تھی, لیکن اب وہ پوری قوت سے سامنے آیا, وہ ہے فزکس بیسڈ ایتھیزم. تو اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے مختلف چیزوں کا ہم تجزیہ کر رہے تھے. تو اسی سلسلے کا یہ آج ایک تیسرا لیکچر ہے, اور یہ قدرے سمجھ لیں کہ سیولوجیکل ہوگا, کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو ہمارا آرگیومنٹ ہے, یا کم از کم جس کو میں درست سمجھتا ہوں, یا فکر فرائی میں اس کو, یا قرآن مجید ہی کی وجہ سے ایک سینٹرل حیثیت دی جاتی ہے, وہ آرگیومنٹ ہے کیا, اور کیا یہ جو نیو فزکس ہے اس کے پھر اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, یا کوئی اگر کرٹیسزم ہمارے سامنے آتا ہے اس آرگیومنٹ کے اوپر تو وہ کیا ہے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اسکرین شیئر کر دوں. جی, آپ لوگوں کو اب میری اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟
جی نظر آ رہی ہے.
جی, اچھی بات ہے. تو ہم بغیر کسی ڈیلے کے میرے خیال ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آج بھی ہم نے کافی ساری چیزیں کور کرنی. آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ مجھے, یہ ای میل ایڈریس موجود ہے, اس پر بھی ای میل کر سکتے ہیں, اور اس میں حوالہ دے دیجئے گا کہ آپ اس کورس کے حوالے سے یا اس ورک شاپ کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو آج کا جی جو ایجنڈا ہے وہ, پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. لاسٹ ٹائم مجھے کچھ فیڈ بیک ملا کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بات مشکل ہو گئی تھی, لیکن جو اس کا جسٹ ہے وہ بیان کرنا یا کسی لے مین کو بھی سمجھانا, آئی نو کہ آپ لوگ سارے لے مین نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے نا, تو ڈائیورس آڈینس ہے, تو وہ ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. ہم ریکیپ دیکھیں گے, اور پھر لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کوشچنز اور کامنٹس کا یا آپ کے جو کنسرنز ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں بچا تھا, تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہے تو وہ آپ کر سکے. یہ ہم درمیان میں رک کر کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پر آئیں گے کہ جو تھیولوجیکل امپلیکیشنز ہے. تھیولوجیکل کا مطلب تھیولوجی, یعنی ایک تو بڑے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے نا, کہ ہم خدا تعالیٰ کا جو بھی مذہب ہے دیا ہوا, جو بھی وہ کرسچن اسکرپچر سے پھوٹا ہوا ہو یا جوڈائزم کے اسکرپچر سے یا اسلام کے اسکرپچر سے, اس کو سمجھنا. لیکن اس کو جو اس کی جو زیادہ پریسائز ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی نیچر, وہ اس کی صفات کیا ہیں, وہ کیسا ہے, اس کو سمجھنا. تو جو یہاں پر ابراہیمی خدا ہے زیر بحث, مجھے جس کو ہم زیادہ اگر جنرلائز کر دیں تو وہ خدا جس نے کائنات کو بنایا. یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ خدا کی دوسری کچھ اقسام بھی پائی جاتی ہیں فلسفے میں, مذہبیات میں. تو یہاں پر جو مین سٹریم خدا ہے جو شائع و ضائع ہے ہر طرف, وہ جو ابراہیمک لٹریچر کا خدا ہے یا ٹریڈیشن کا خدا ہے, وہ زیر بحث ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے سیلف کریشن آف یونیورس فرام نتھنگ, اس کی اس پر کیا امپلیکیشنز آتی ہیں, اور امپلیکیشنز دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اس کی کچھ امپلیکیشنز ہم لاسٹ ٹائم فلوسافیکل دیکھ چکے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے خدا کے بارے میں, اس کی کیا اس نے اس کو بالکل اننیسیسری کر دیا ہے, معاملہ ہوا کیا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کے کانسیپٹ کے ساتھ. اس کے بعد ایک جو بڑا برننگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ ورسز دا لاز آف فزکس, ये बात बयान की जाती है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो मौजूद थे, उन्होंने खुद ब खुद कायनात को वजूद बख्श दिया और अब वो गोया के खुदा की जगह उन्होंने ले ली। इसको भी हम देखेंगे कि क्या माजरा है, कि ऐसा हो सकता है कि हम लॉज ऑफ फिजिक्स से खुदा का जो वजूद है उसको रिडंडेंट करार दे दें या अननेसेसरी करार दे दें और लॉज ऑफ फिजिक्स एक नए खुदा की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। जैसे कि एक जो प्लेटोनिक या ग्रीक फिलोसफी में खुदा का कॉन्सेप्ट था, उस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट बन जाए, इन चीजों को भी हम खोलते हैं। इसमें अभी हमारे बाकी जो लेक्चर्स रह गए हैं उसमें एक दो चीजें बाकी रहती हैं, बल्कि चंद चीजें बाकी रहती हैं। उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सवाल है कि अगर खुदा ने कायनात बनाई है तो खुदा को किसने बनाया है, जैसे रिचर्ड डॉकिंस और बाकी लोगों ने इसको ज्यादा पॉपुलराइज किया है इन दिनों। और एक ये जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि स्टीवन हॉकिंग और हार्टल, ये एक आ रहा है इसमें, सॉरी, इन्होंने एक नजरिया पेश किया नो बाउंड्री कंडीशन का, कि जो बहुत कदीम यूनिवर्स थी जब वो बिल्कुल वजूद में आई तो उसमें वक्त नहीं था। वक्त नहीं था तो वक्त के बगैर खुदा ने कैसे किसी चीज को बना दिया, यानी जब वक्त नहीं था तो वो उनकी अजम्पशन ये है कि खुदा वक्त के अंदर चीजें करता है, तो जब वक्त ही को खत्म कर दिया तो बनाने का सवाल वो खुद ही खत्म हो गया। देखे ना आप, जैसे एक बढ़ई या आप किसी पॉटर को या आप किसी को भी कोई काम करते हुए देखते हैं, मैं अपना इवन हाथ ही उठाता हूँ, तो ये वक्त में हो रहा है ना, जब वक्त ही खत्म हो जाएगा तो मेरा हाथ उठने का या तब्दीली आने का, चेंज का, कॉज का, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इसको हम बड़ी तफसील से कोशिश करेंगे, या अगर तफसील से नहीं तो कम अज कम एक लेक्चर अभी इस सीरीज में मेरे पेश नजर है, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि चीजों को सिंप्लीफाई करके पेश करूं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो ये जो तीन चीजें हैं ये एक लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे। तो हम जी आगे बढ़ते हैं, ये जो आप लोगों को मैंने रीकैप देना था उसकी तरफ, जो आइडिया हम देख रहे हैं वो है सेल्फ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, कि यूनिवर्स ने अपने आप को खुद वजूद बख्श दिया नथिंगनेस से। तो इसमें नथिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने बड़ी तफसील से लास्ट टाइम देखा था, और ये जितने साइंटिस्ट आपके सामने मैंने मोस्ट ऑफ द मार्क कंटेम्प्रेरी ये पेश किए हैं, या इनकी इनकी जो फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर की हैं, ये तमाम के तमाम इस हाइपोथेसिस को मानते हैं। और बारीक बारीक जो फर्क हैं अलबत्ता वो इनमें पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो पीटर एटकिंस हैं, ये बहुत वोकल हैं, एथिस्ट हैं, इनका जो नथिंग का कॉन्सेप्ट है वो कदरे मुख्तलिफ है बाकी ये कमोबेश जो जो ये बाकी लोग हजरात आपको नजर आ रहे हैं इनका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, विलिंकन को छोड़कर, विलिंकन को और इनको छोड़कर। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास वक्त बचा तो इस पर भी एक नजर डाल लेंगे कि उनका नथिंग का, इन इन दोनों हजरात का नथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जी एक रिकैप आप लोगों के सामने पेश कर दूं, वो रिकैप ये है कि जिसको ज्यादातर फिजिसिस्ट नथिंग कहते हैं वो असल में नथिंग नहीं है, वो क्वांटम वैक्यूम को नथिंग कह रहे थे। क्वांटम वैक्यूम क्या है? स्पेस बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर, बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, दो जो आप समझ लें कि इवन प्रोटॉन्स को भी जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ने बनाया है उन पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस पाई जाती है, इतनी छोटी स्पेस अज्यूम क्यों की उन्होंने? वो इसलिए अज्यूम की कि यूनिवर्स जो है जब बिग बैंग हुआ इसको कॉन्ट्रैक्ट करते चले जाएं तो आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो वॉल्यूम हो जाएगा स्पेस का, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शन होगी तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, इसको छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो ये इसके पीछे एक अजम्पशन है कि अगर बिग बैंग के जरिए से यूनिवर्स वजूद में आई तो वो बहुत ही एक छोटे लेवल से वजूद में आई होगी। अब वो एक छोटी स्पेस जो वो एज्यूम करते हैं उसमें ये जो फिजिक्स के रोजमर्रा के हमारे कवानीन हैं, न्यूटन के, इवन जो आइंस्टाइन के भी जो कवानीन है वो, खैर आइंस्टाइन का तो ये है कि उसमें एक ही प्रॉब्लम पैदा करता है, बाकी चीजें मर्ज हो गई हैं उसके साथ, लेकिन बहरहाल वो जो छोटे लेवल पर फिजिक्स होती है उसमें बड़े बिजार किस्म की चीजें हो रही होती हैं, जो कि ये क्लासिकल लेवल पर नहीं होती और ना ही क्लासिकी लेवल को उठाकर तो वहां पर ले जाके अप्लाई किया जा सकता है, यानी क्लासिकी लेवल के जो लॉज हैं या अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की। तो वो जो बिल्कुल छोटी सी स्पेस होती है वो कभी भी खाली नहीं होती, एम्प्टी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जारी रहती है। तो अब वो जो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी ना हो, वो हो ही नहीं सकता। अब छोटे से छोटे लेवल पर स्पेस पर चले जाए, इतने छोटे लेवल पर जो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स के भी जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है, तो वो एक भरी हुई होती है एक्टिविटी से, उसके अंदर पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, सो फोर्थ। तो अब नथिंगनेस को रिप्लेस कर दिया उस कॉन्सेप्ट ने, इसको जो क्वांटम वैक्यूम स्टेट है, जो इतने छोटे लेवल पर स्पेस है, इसको जो फिजिसिस्ट है वो नथिंगनेस कह रहे थे। और उस नथिंगनेस से फिर ये कहते हैं कि पूरी की पूरी कायनात वजूद में आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नथिंग से कायनात वजूद में आ गई, लेकिन ये जो ऑलमोस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसला ये है कि स्पेस मौजूद थी, एनर्जी उसके अंदर मौजूद थी, इसी छोटे लेवल पर जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया। तो वो नथिंग तो उस सेंस में नहीं था जिस सेंस में हम या फिलासफर्स को बोलते हैं। तो वहां उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर फिर ये हुआ कि वो अचानक से जो पार्टिकल्स आपको मैंने बताया कि बन रहे टूट रहे होते हैं, उनमें से एक पार्टिकल जो है ना वो फूलना शुरू हो गया। उसकी भी वजूहत बयान की जाती है कि वो क्यों ऐसे फूलना शुरू हो गया। उसके अंदर जो छोट जो कायनातें बन रही थी, टूट रही थी, आपको फिर ये एक थोड़ा सा जंप लग गया। वो जो पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे थे, बन रहे टूट रहे थे, जो स्पेस के अंदर, वो आप समझ लें कि वो कायनातें हैं जो कि बन रही टूट रही हैं, बन रही टूट रही हैं। जमीनें भी नहीं, गैलेक्सीज भी नहीं, पूरी की पूरी कायनातें। क्योंकि वो जो प्राइमोर्डियल स्पेस है उसमें से जो पार्टिकल्स अब फूट रहे हैं, आज भी फूटते हैं, हम उनको उनकी उनको उनके इफेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं बड़े प्रिसाइजली। तो ये आप देखें ना, पूरा 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 का पूरा जो हाइपोथेसिस है अभी क्वांटम लेवल के ऊपर, उसको उठाकर हम पीछे ले गए हैं। तो वो जो चीजें पार्टिकल्स फूट रहे हैं, बहुत तफसील से हम बहस कर चुके हैं, आई होप आपको याद है ये बातें। तो वो जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल जो भी पेयर निकल रहा होता है इस तरह से क्वांटम वैक्यूम स्टेट या स्पेस में से, आप उसको कह दें, जिसमें एनर्जी पहले से मौजूद होती है। जी वो जो आपको बता रहा था कि जैसे वो जो नथिंग का कॉन्सेप्ट है वो असल में एक स्पेस और एनर्जी पहले से उसके अंदर मौजूद है, और उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं, जिनका हम अभी मुशाहदा करते हैं, उनको हम पीछे ले गए हैं कायनात के आगाज में, और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि वो जो पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं वो पूरी 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 की पूरी कायनातें हैं। तो एक यानी कायनात नहीं उस स्पेस एनर्जी में से निकल गई, बल्कि मल्टीवर्स या बहुत सारी कायनातें बन रही और टूट रही होती हैं। उसमें हमारी कायनात जो है, इस किस्म की कुछ और कायनातें भी, वो उनमें एक रैपिड इन्फ्लेशन हुआ होगा, उनमें एक फैलाव हुआ होगा बड़ा तेजी से। और ये देखें, अगर आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, तो ये है वो स्पेस और एनर्जी बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, उसके अंदर से कायनातें पार्टिकल्स की सूरत में निकल रही है बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, और उसमें से कुछ कायनातें जो है उनमें अचानक से रैपिड किस्म का एक इंफिजार होता है और फैलना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो इंफिजार क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि जैसे हमारी कायनात थी वो इतने छोटे लेवल के ऊपर जब वो निकली, तो उसमें आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करती है कि इतने छोटे लेवल के ऊपर अगर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा जमा हो बहुत ही छोटी स्पेस के अंदर, तो वहां पर जो ग्रेविटी होती है वो नेगेटिवली बिहेव करती है। ऐसे बिहेव नहीं करती कि वो चीजों को आपस में मिलाती है, बल्कि ऐसे बिहेव करती है कि चीजों को वो एक दूसरे से अलग करती है। यानी ग्रेविटी को हम जानते हैं ना कि वो एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वहां पे अट्रैक्टिव के बजाय वो रिपल्सिव फोर्स की सूरत में काम करती है। तो वहीं वहां पर यही हुआ कि ग्रेविटी ने रिपल्सिव तौर पर काम किया और कायनात में एकदम फैलाव हुआ। जब कायनात में फैलाव हुआ तो वो जो आपको मैं बताया था ना, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर जो है वो खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को अनाइलेट कर देते हैं। तो ये एक रैपिड एक्सपेंशन की वजह से उन्होंने अनाइलेट नहीं किया। और आप देखें कि क्या हुआ, स्पेस मौजूद थी, उसमें एनर्जी मौजूद थी, उसके अंदर ये पेक्यूलियर किस्म का एक रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर था वो मौजूद था, जो कि मैंने आपको कहा कि जो थीरीज हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं कि उस एक्सट्रीम जो सिचुएशन है उसमें ऐसे मटेरियल पाया जाना चाहिए ग्रेविटी नेगेटिव किरदार अदा करे। जब ग्रेविटी नेगेटिव किरदार अदा कर रही होती है तो एक इंफिजार हुआ पूरा का पूरा, और उसमें फिर क्या हुआ, ये इंफिजार भी बहुत ही पिक्यूलियर था, बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि इसमें दो काम हुए, एक तो कायनात जो है वो बहुत तेजी से फैली, दूसरा ये कि जो भी उसके अंदर वो रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल था या जो भी एनर्जी पाई जाती थी उसने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, और इतना सारा मैटर, सारे के सारा मैटर या सारी की सारी एनर्जी जितनी अभी हमें यूनिवर्स में नजर आती है वो सारी की सारी वहां पर पैदा हो गई यकमुश्त। और वो कैसे पैदा हो गई, यानी वो जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या हुआ कि नई एनर्जी पैदा होगी, उसमें फिर वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको बीच में लाया जाता है और कहा जाता है कि जो कायनात का फैलाव हुआ, इन्फ्लेशन बड़ा तेज, उससे पहले और उसके बाद में टोटल एनर्जी जो है वो उसकी जीरो रहेगी, क्योंकि मैटर की या रेडिएशन की पॉजिटिव एनर्जी होती है और ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। जून जून पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, नया मैटर पैदा होगा, नई एनर्जी पैदा होगी, तो ग्रेविटी जो है वो उसमें उतना ही उसको काउंटर करेगी। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके 10 रुपए आ रहे हैं बैंक में तो -10 भी साथ साथ आ जाएंगे, टोटल जीरो रहेगा। फिर 20 रुपए आ रहे हैं तो -20 भी साथ साथ आएगा, तो टोटल हमेशा वो जीरो रहेगा। तो इस वजह से एनर्जी हमें चाहिए नई नया मैटर बनाने के लिए, हम चीजें बहुत तफसील से देख चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्स ने इन्फ्लेट किया और एक बहुत तेजी से, और उसके बाद फिर ये पिक्चर मर्ज हो जाती है बिग बैंग के साथ, के जब ये चीजें ये चीज हो गई बहुत तेजी से, इन्फ्लेशन हो गया, यकमुश्त कायनात नथिंगनेस से एक गोल्फ बॉल के साइज की हो गई, या एक ग्रेप फ्रूट का बयान किया जाता है उसके साइज की हो गई, तो उसके बाद फिर ये उसी इनर्शिया की वजह से, जो पहले से एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुई उसी की वजह से ये फैलती चली गई कायनात। उसके अंदर फिर आपको वो सारा मालूम है कि बयान किया जाता है कि वो फिर ठंडी हुई, उसके अंदर फिर मैटर पार्टिकल्स पैदा हुए, ये जो पार्टिकल्स हैं फिर ये आपस में कोलेस हुए, मिले, इनसे एटम्स बने, फिर वो एटम्स अब जो थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के थे, उसके बाद फिर करते करते ग्रेविटी ने चीजों को आपस में करीब लाई और स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी की सारी पिक्चर फिर एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स शुरू हो जाती है। तो ये हम सारी पिक्चर अगर देखें तो पहली बात ये है कि नथिंगनेस से ये इमर्ज नहीं हो रही, ये इमर्ज हो रही है प्रिमिटिव स्पेस और एनर्जी से, स्पेस और एनर्जी मौजूद थे उधर से ये सारा सिलसिला चल रहा है। असल में देखा जाए तो वही जो एनर्जी है, या आप उसको पहले मैटर कह लें या एनर्जी कह लें, जो भी चीज वजूद में आई पहले, एनर्जी पर हमारा कंसेंसस है फिलहाल, तो वो एनर्जी पर हालतें तब्दील करती चली जाती है। तो असल में हमने जो चीज एक्सप्लेन करनी है, यानी अगर वो ये स्पेस और एनर्जी आप मुझे दे दें तो कायनात खुद ब खुद फिर वजूद में आती चली जाएगी, लेकिन ये एनर्जी जो है और स्पेस है ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, ये वो बीज है या ये वो आप समझ लें कि मदर ऑफ एवरीथिंग है जिसमें से चीजें फिर फूटती चली जा रही है। तो अब क्या हुआ कि क्या इस पिक्चर ने, जैसे कि स्टीवन हॉकिंग और बाकी लोग बयान करते हैं कि खुदा ताला के वजूद की नफी कर दी है, या उसको, बल्कि वो ज्यादातर हजरात ये नहीं कहते कि नफी कर दी है, बल्कि वो ये कहते हैं कि खुदा को अननेसेसरी, कि खुदा की हमें जरूरत नहीं रही कायनात के वजूद में, यानी एक सुपरफ्लूअस सी बात हो गई है, एक ऐसा एक इजाफी मफरूजा हो गया कि कोई खुदा हमें चाहिए था नहीं, ये एक सेल्फ कंसिस्टेंट पिक्चर बन गई कायनात के अंदर से ही, हमने बता दिया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो द ग्रैंड डिजाइन, ये TGD जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टीवन हॉकिंग की द ग्रैंड डिजाइन जो लास्ट किताब थी उसमें ये सब कुछ बयान हुआ ना, तो स्टीवन हॉकिंग जो है वो क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि खुदा की जरूरत बाकी ना रहे एज अ फर्स्ट कॉज, कि खुदा ताला जो है वो स्पेस के अंदर कोई चीज कुछ कर रहे हैं, या स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं, या कोई एनर्जी फ्यूज कर रहे हैं, नहीं, ये जो स्पेस जो क्वांटम वैक्यूम पाया जाता है इसको वो कहते हैं कि ये सेल्फ यानी एक कंसिस्टेंट पूरी की पूरी पिक्चर हमारे सामने पेश करता है कि स्पेस और एनर्जी जो क्वांटम वैक्यूम है उसको माना जाए कि वो इटर्नल है। इसी को हमने आगे देखना था कि उसको इटर्नल क्यों माना जाएगा, वो जो नो बाउंड्री कंडीशन, वो जो टाइम को वहां से वो निकाल देते हैं। वो कहते हैं इसको इटर्नल माना जाए, और बहुत ही सिंपल था ये, और सिंप्लिसिटी से उसके बाद फिर इवॉल्व करते करते कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग आ गए। तो खुदा की एक फर्स्ट कॉज के तौर पर हमें कोई जरूरत नहीं थी। ये फर्स्ट कॉज आपको के शायद दिल में हो कि फिलासफर इस तरह से एक खुदा के बारे में जो आर्गुमेंट्स देते हैं ना, उनमें एक आर्गुमेंट ये है कि जब कॉज इफेक्ट की चेन चल रही है तो ये जाके किसी जगह पर रुक जाएगी ना, किसी बीच तक जाके या स्पेस और एनर्जी तक रुक जाएगी, उसके पीछे भी तो की कॉज होनी चाहिए और वो कॉज खुदा को होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से उस फर्स्ट कॉज को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे कि अभी बयान करते हुए आपके ऊपर वाजे हो गया कि ये इसको इटर्नल माना जा रहा है, वो भी अभी हम पूरी पिक्चर सामने आएगी तो देखेंगे कि टाइम को खत्म कर देने के बावजूद भी जो फर्स्ट कॉज की जो जरूरत है वो बाकी रहती है। और स्टीवन हॉकिंग के जो अपनी स्टोरी है उसके अंदर से हम बयान करेंगे कि वो क्यों बाकी रहती है, ये हम पूरे तरीके से बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो पिक्चर सामने आ रही है उसी से कम ये चीज वाजे हो रही है कि स्पेस और एनर्जी मौजूद थे, तो ये कहां से आ गए? ये क्वेश्चन जो है ये पूरी कुवत से अपनी जगह पर मौजूद रहता है। स्टीवन हॉकिंग ने जो इसका आंसर पेश किया है, जो हम नो बाउंड्री कंडीशन में लेटर ऑन देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो इसका जवाब नहीं देता। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दूं कि वो खुद ये स्पेस और एनर्जी या क्वांटम वैक्यूम है, इसमें टाइम के बगैर मान रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो रही हैं या कॉज इफेक्ट के तरीके पर वहां पर भी कुछ चीजें हो रही हैं, चाहे कॉज मुतय्यन किया जा सके या ना किया जा सके, लेकिन स्पॉन्टेनियसली कुछ चीजें हो रही हैं। जब कुछ चीजें हो रही हैं तो उसको असल में उन्होंने वो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना कि हम देखते हैं कि एक लम्हा गुजर रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, इसको खत्म करके एक ही लम्हे में वो सब कुछ हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पेश किया, उसको हम तफसील से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी पिक्चर सामने आई है, मैं फिर से कहूँ कि वो ये पिक्चर बनती है कि कुछ था पहले और उससे फिर चीजें वजूद में आ रही, तो वो जो पहले था स्पेस और एनर्जी या क्वांटम वैक्यूम था वो कहां से आ गया? तो ये जो फर्स्ट कॉज को रेडिकेट करने वाली बात वो नहीं बनती इस सारे सारी थ्योरी से या हाइपोथेसिस से। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज थी, कोई बीज मौजूद था, उससे फिर सारी की सारी चीजें फूटती चली गई। ये क्यों पहली कॉज रेडिकेट नहीं होती, इसको मैंने बयान कर दिया, जो भी आपको बता भी दिया कि बिकॉज इट इज इनफैक्ट स्पॉन्टेनियस क्रिएशन आउट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग क्वांटम वैक्यूम स्पेस टाइम एंड एनर्जी एंड सब्सिक्वेंटली द रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर। पहले माना जा रहा है स्पेस और एनर्जी को, उसके बाद रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर को माना जा रहा है। ये मौजूद थे, ये नथिंगनेस से क्रिएशन है ही नहीं, ये इनकी वजह से ये सब कुछ फिर ये हुआ है इस पिक्चर में। तो और ये फिर एक ऑब्वियस क्वेश्चन रेज करता है जो मैंने पहले ही आपके सामने पेश कर दिया कि ये जो स्पेस और एनर्जी है, ये क्वांटम वैक्यूम जो है, इसमें अभी हम वो इस तरफ नहीं आते कि जो ग्रेविटी के जरिए से ये रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर जो है उसने किस तरीके से इंफजार किया और उसके बाद फिर उस मैटर भी ये अपने आप को रेप्लीकेट किया और जितना मैटर हमें चाहिए था वो पैदा हो गया रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर की फॉर्म में, और उसके बाद वो फिर अनस्टेबल था, वो जब स्टेबल मैटर में तब्दील हुआ तो ये मैटर जिसको हम जानते हैं, जिसकी जो ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव होती है, वो हमारे सामने आ गया। तो हम इस पर फोकस करते हैं कि ये देखें स्पेस और एनर्जी जो है ये पहले मौजूद है, और ये ना होती तो ये कुछ भी ना होता, ठीक है? तो ये ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन रेज करती है कि ये जो क्वांटम वैक्यूम है या प्रिमिटिव स्पेस और उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है, ये कहां से आ गया, इसको किसने बनाया अगर खुदा ने नहीं बनाया तो? अच्छा, इसमें लेकिन हमें रुकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एक चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और हमने सीधा कह दिया कि ये खुदा ने ऐसा किया होगा। ये तो वही बात आ गई जो कि न्यू एथिस्ट कहते हैं कि गॉड ऑफ द गैप्स, कि अगर कोई चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई नॉलेज गैप है आपका, तो आप कह देते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसे होगा, खुदा ने कर दिया। तो असल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग और का गैप होता है, जो आप चीज समझ नहीं पा रहे होते, उसमें किस ना किसी तरीके से एक एक बस एक जहनी ट्रिक के तौर पर आप खुदा को दाखिल कर देते हैं कि खुदा ने किस ना किसी तरीके से ये किया होगा। इसकी मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूं कि जिंदगी जो है वो कैसे वजूद में आ गई, इसका हमारे पास कोई अभी हाइपोथेसिस नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कैसे हैरत अंगेज मामला हो गया। तो इसमें अगर ये कह दिया जाए सीधा सीधा कि खुदा ने किसी ना किसी तरीके से ये कर दिया होगा, तो कल को कुछ मैकेनिज्म्स जो नेचुरल मैकेनिज्म्स दरियाफ्त हो जाएं कि नेचुरली खुद ब खुद मैटर में से जिंदगी कैसे पैदा हो गई, और खुद ब खुद किसी मैजिकल तरीके से नहीं, कोई ना कोई प्रोसेस फिजिकल चला होगा, तो क्या होगा कि जो हमने खुदा पोस्टुलेट किया होगा कि खुदा ने ये किया होगा, अजम्पशन ये होगी कि खुदा ने इंटरवीन किया होगा या हाथों से कुछ बनाकर वहां पे जिंदगी का पहला मॉलिक्यूल रख दिया होगा, ये इसकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी, तो हमारा खुदा जो है भग करके उड़ जाएगा। तो ये इसको गॉड ऑफ द गैप कहते हैं। ये जो अब गैप यहाँ पर भी एक हमें नजर आ रहा है कि स्पेस और एनर्जी मौजूद है, कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये इसको यकीनन खुदा ने बनाया होगा। अब मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि क्यों, वेट अ सेकेंड, कि क्यों मैं ये डायरेक्ट कह दिया कि खुदा ने बनाया होगा। इस जवाब को हासिल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा खुदा के बारे में आर्ग्यूमेंट क्या है। वो आर्ग्यूमेंट जब हमारा सामने आएगा तो पता चलेगा कि हम कायनात के पीछे खुदा को फर्स्ट कॉज के तौर पर, और ना सिर्फ ये कि फर्स्ट कॉज के तौर पर बल्कि वो ऐसी कॉज है जो कि पर्सनल कॉज है, जो कि एक माइंड रखती है, उसने ये चीज कॉज की, और उसके बाद ये सारा का सारे जितने इवोल्यूशन हो रहा है कायनात का, इसको वो सस्टेन भी कर रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, मुझे कुछ इत्मीनान अभी नहीं हो रहा है जैसे मैंने यहाँ पर चीजें बयान की हैं, लेकिन हम इस पर और वक्त नहीं लगा सकते, ये बहुत तफसील से लास्ट दो लेक्चर्स हमने इस चीज को दी हैं और इसमें ये कवर की हैं। तो आई होप कि आप के जहन में वो लेक्चर्स ताजा होंगे, अगर नहीं तो आप उनको दोबारा देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें बहुत तफसील से हमने वहां पर बयान कर दी है, तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, और अगर आपके कुछ सवालात वगैरह हैं ये क्रिएशन आउट ऑफ नथिंगनेस के बारे में, तो वो आपसे ले लेता हूँ, तो आप प्लीज अगर यू गो अहेड, और इसके बारे में कुछ सवाल आते हैं तो वो अभी कर लें। शबाना अंसारी साहिबा हैं जी, आप प्लीज पूछें अगर आपके जहन में कोई बात है तो।
अस्सलाम
जी वालेकुम सलाम।
वालेकुम। ये जो आपने बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि नथिंगनेस है और उसमें तो उसके अंदर तो इतनी एनर्जी है, तो वो नथिंगनेस से ज्यादा तो समथिंगनेस ज्यादा लग रही है, वो
जी,
महसूस हो
ऐसा
रही है
ही है।
कि उसमें बहुत कुछ है।
बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमने लास्ट टाइम बहुत तफसील से देखा था कि
और
ये
दूसरा ये
नथिंगनेस
सवाल
है ही
था,
नहीं। जी जी प्लीज।
दूसरा ये था कि अगर फर्स्ट कॉज को, जिसको उन्होंने फर्स्ट कॉज को इन्होंने इटरनल माना है ना।
इसको हम अभी देखेंगे, ये जो स्पेस और एनर्जी है ना, इसको वो एटर्नल मानेंगे स्टीवन हॉकिंग, और इसकी वो पूरी अपनी एक थियरी पेश करेंगे कि ये इसको वो इटर्नल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें एक चीज जो मेन पहली चीज है वो ये है, हॉकिंग एंड हार्टल्स नो बाउंड्री कंडीशन रिमूविंग टाइम इन द वेरी अर्ली यूनिवर्स हेंस चैलेंजिंग एनी टेम्पोरल एक्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन, ये सॉरी एनी है। तो वो बात ये है कि टाइम के कॉन्सेप्ट को वो रिमूव कर देंगे, टाइम का कॉन्सेप्ट जब रिमूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज इटर्नल करार पाएगी, जो भी ये जो प्रिमिटिव क्वांटम वैक्यूम है या स्पेस है वो इटर्नल करार पाएगी। जी ये ऐसे ऐसे
यानी
है,
बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस वाली बात करेंगे ना वो।
स्पेस के बियॉन्ड नहीं जा सकेंगे, टाइम के बियॉन्ड चले जाएं,
अच्छा,
तो
बियॉन्ड टाइम।
स्पेस इटर्नल मानेंगे।
अच्छा, तो चाहे वो उसको मतलब कुछ भी नाम दें, तो वो हो तो वो गॉड ही रहा है ना, लग तो वो गॉड ही रहा है। इटरनल जिसको भी माने तो वो हमारे हिसाब से तो वो गॉड ही लग रहा है।
आपकी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छी है इस हिसाब से कि करते करते फिर आप देखेंगे, अभी आज हमने लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिस्कस करना है, तो वो जो चीज थी उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीके पर गो कि उसको इटर्नल माना जा रहा है, लेकिन उस इटर्नल चीज के अंदर भी पहली बात यह है कि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, और दूसरी बात यह है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उनको मौजूद माना जा रहा है। अब आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि एक तो इटर्नल मान लिया, दूसरा जो लॉज ऑफ फिजिक्स है उनको मान लिया कि उन्होंने समहाउ क्रिएशन कर दी। लॉज ऑफ फिजिक्स हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर आप मौजूद थे उस लेक्चर में, कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो कोई माइंड नहीं रखते, वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, वो खुद मरहूने मिन्नत है इस चीज के कि पहले कोई चीज मौजूद हो और जैसे ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर, पहले एनर्जी मौजूद हो और उस एनर्जी का मैस में ढल जाने का एक एक कोई उसके अंदर पोटेंशियलिटी मौजूद हो, तो आप मुझे वो एनर्जी दे दें, तो उसके बाद ये रिलेशनशिप खुद ब खुद वजूद में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉज पहले हो, इक्वल एम सी स्क्वायर पहले कहीं पड़ा हो और उसने क्रिएट कर दिया हो, नहीं, पहले एनर्जी मौजूद है, मैटर मौजूद है, उसके अंदर अंदर ये सारे लॉज कार फरमा, इसको भी हम देखेंगे लेक्चर के आखिरी हिस्से में। तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स को भी कह दिया जाता है, समहाउ उनको क्रिएटर का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसको हमने लास्ट टाइम, फिर मैं कहूंगा, तफसील से देखा था, वो लेक्चर देख लीजिएगा। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ठीक है, ये करते 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 हम समहाउ, ये वही बात है कि नेचर के अंदर वो सारी क्वालिटीज पैदा कर देते हैं जो खुदा के अंदर होनी चाहिए, और उसको हम नेचर का नाम दे देते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स का नाम दे देते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी
जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
जी। अगर कोई और बात नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने देखना है कि ये जो सारा नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है, बल्कि जैसे बहन ने कहा, ये इट इज रियली समथिंग। हम बहुत, बल्कि इसमें तफसील में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, हम बहुत तफसील से लास्ट टाइम मुख्तलिफ कोटेशंस देख चुके हैं कि कैसे फिजिसिस्ट जो हैं, खुद वो जो इस थ्योरी को मानते हैं, वो बयान करते हैं कि ये असल में नथिंग है ही नहीं। तो एनीवे, अभी हम इसको थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इस का सारा क्या असर पड़ता है। बल्कि हमने इसका शुरू तो कर ही दिया हुआ है कि जैसे हमने जो फर्स्ट कॉज हम खुदा को कहते हैं, तो ये फर्स्ट कॉज भी खत्म नहीं हुई, ये जो चीज थी इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो उस बिग पिक्चर पर दोबारा हम लेटर ऑन आते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि खुदा क्यों, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट मैं लफ्जी भी आपके सामने बयान कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पूरी शान के साथ आप लोगों के सामने, और जैसे मैंने अपनी किताब के अंदर इसको डॉक्यूमेंट किया है, उसको हम जरा एक एक कर देख लें, ताकि पूरे प्रोसेस से आप गुजर जाएं। अभी हम एक डिटेल्ड पिक्चर देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर इस डिटेल पिक्चर को मैं आपके सामने एक हायर पिक्चर में कन्वर्ट करूंगा, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, बॉग डाउन ना हो जाए आप डिटेल्स के अंदर। तो हम इसको शुरू कर देते हैं, तो फिर आगे खुलती चली जाएगी ये पिक्चर। आप लोग इसमें परेशान ना होना कि ये डिटेल बनती जा रही है, या कोई जो सिरा है, ये बड़ा जो पर्सपेक्टिव है वो हाथ में नहीं आ रहा है। ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो बड़े पर्सपेक्टिव पर भी जाऊंगा। देखिए, मैंने ये लिखा है कि क्यों खुदा क्यों, हमने कहा कि वो जो पहला स्पेस मौजूद थी, एनर्जी को भी हम छोड़ देते हैं, एनर्जी असल में स्पेस ही की प्रॉपर्टी है, तो स्पेस मौजूद थी, उस स्पेस की को बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। उस पर मैंने ये तबसरा करते हुए लिखा है कि उसको बनाने वाला खुदा होना चाहिए, खुदा नहीं था तो वो कौन था। क्यों खुदा? बिकॉज वेदर इट वॉज आउट ऑफ अ क्वांटम वैक्यूम और एक्स नाइलो क्रिएशन, एक्स नाइलो हमने देखा था कि क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, चाहे क्वांटम वैक्यूम से आप कहें कि क्रिएशन हुई है, ये एब्सोल्युटली नथिंगनेस से क्रिएशन हुई है। इसको भी हमने देखा था कि एब्सोल्युटली नथिंगनेस जब हम बोलते हैं मजहबी लोग, तो ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी नहीं था, खुदा भी नहीं था। नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हम खुदा ताला को मान रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि खुदा ताला ने अपने से अलग नथिंगनेस से ये मैटर और सारी चीजें अपने कॉल के जरिए से या अपने इरादे के जरिए से ये इनको वजूद बख्शा। तो बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ क्वांटम वैक्यूम और एक्स नाइलो क्रिएशन, चाहे क्वांटम वैक्यूम से हो चाहे नथिंगनेस से हो, द प्रिमिटिव वैक्यूम एनर्जी, जो वो प्रिमिटिव वैक्यूम था ना, जो स्पेस थी, वैक्यूम को आप स्पेस समझे आम टर्म्स में, द प्रिमिटिव वैक्यूम एनर्जी, वो जो शुरू में स्पेस मौजूद थी और उसके अंदर एनर्जी मौजूद थी, केम लोडेड विद अ प्रोडिजियस पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर। वो जो स्पेस मौजूद थी उसमें ये पोटेंशियलिटी पहले से पाई जाती थी, ये कुवत पाई जाती थी कि वो जो सेल्फ रिपल्सिव जो ग्रेविटी मैटर है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर, वो जिसने बाद में कहा जाता है कि इतनी सिर्फ एनर्जी थी उसके अंदर कि जितनी चांद के अंदर होती है, उस छोटी सी स्पेस के अंदर, ठीक है। तो वो चांद जितनी एनर्जी को पूरी कायनात उस एनर्जी में से कैसे वजूद में आ गई, उसके अंदर पोटेंशियल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, उसके अंदर बिल्कुआ ये सलाहियत पाई जाती थी कि वो फटे, इन्फिजार हो उसके अंदर, एक्सप्लोजन हो, और जब एक्सप्लोजन हो तो वो एनर्जी अपने आप को रिप्रोड्यूस करती चली जाए। ये ऐसे है कि एक सेल हो और वो सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करता चला जाए, एक ऑर्गेनिज्म हो और उस ऑर्गेनिज्म के जरिए से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकल कर तो कायनात में फैल जाए। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो जो स्पेस शुरू में मौजूद थी उसके अंदर एक ये पोटेंशियल पाया जाता था कि वो ये इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर को प्रोड्यूस कर दे। और जब ये स्पेस होगी और उसके अंदर ये पोटेंशियलिटी थी और ये पोटेंशियलिटी जब मैनिफेस्ट हुई जहूर में आ गई तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एक इंफिजार हुआ। तो फिर क्या हुआ, देखिए द प्रिमिटिव वैक्यूम एनर्जी पहले वो मौजूद थी, केम लोडेड विद अ प्रोडिजियस पोटेंशियल टू प्रोड्यूस अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर। उसने रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर को वजूद बख्शा और रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर फिर क्या हो रहा है, ये हालतें तब्दील करता चला जाएगा। ये सबसे पहले डिके हुआ नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कन्वेंशनल मैटर में, नॉर्मल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम मैटर के कहते हैं उनमें। फिर क्या बने, फिर उससे एटम्स बने, फिर क्या बनी उससे अट्रैक्टिव ग्रेविटी बनी। जो एटम्स हैं उनकी हम जानते हैं कि जो ये जब नॉर्मल मैटर वजूद में आ गए तो नॉर्मल मैटर जो है उसमें ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है, वो चीजों को आपस में ग्लू की तरह बांध कर रखती है, वो चीजों को जोड़ती है आपस में, जिसकी वजह से फिर ये गैलेक्सीज वजूद में आई, स्टार्स वजूद में आए, उसके बाद स्टार्स ने भट्टियों का काम किया, उसमें हैवी एलिमेंट्स वजूद में आए, वो एलिमेंट्स जो कि जिंदगी को वजूद बख्शने के लिए जरूरी है, कार्बन ऑक्सीजन एंड सो फॉर्थ। और उसके बाद ये जो स्टार्स बन गए थे उनके गिर ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स ने रिवॉल्व करना शुरू किया और उन प्लैनेट्स पर फिर वाटर वजूद में आया। वाटर के लिए हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद थी, ऑक्सीजन बनी थी उन भट्टियों के अंदर जो स्टार्स फटते थे, सुपरनोवा बोलते हैं उनको, उसमें वो वजूद में आया जो ऑक्सीजन हमें चाहिए थी। पानी वजूद में आया और फिर पानी जब वजूद में आ गया तो उससे फिर इवेंचुअली डीएनए के मॉलिक्यूल्स और उससे पहले आरएनए वर्ल्ड, बड़े हाइपोथेसिस हैं पता नहीं है कैसे, लेकिन जिंदगी समा वजूद में और फैलती चली गई। तो आप देखेंगे एक लफ्ज में गो के बयान कर दिए पूरी की पूरी ये स्टोरी है हमारी कायनात की। सच एवोल्यूशन वुड हैव बीन इम्पॉसिबल इफ द प्रिमिटिव एनर्जी डिड नॉट हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू एग्जिस्टेंस विद स्प्लेंडिड प्रॉपर्टीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी एवोल्यूशन हुई है ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती, जिसका कोई सवाल नहीं था, इल्ला ये कि वो जो पहला जो स्पेस थी और उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती थी, तमाम का तमाम पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद ना होता, उसके अंदर ये कुवत मौजूद ना होती कि वो इन सब चीजों को वजूद बख्श सके। तो असल में क्या हो गया कि वो जो मोस्ट मिस्टीरियस चीज है, वो जो क्वांटम वैक्यूम जिसको वो बोल रहे हैं, स्पेस बोल रहे हैं, सारी की सारी मिस्ट्री तो वहां पर पाई जाती है। देखिये मैं जरा आगे जाता हूँ और एक पिक्चर जो आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी वो दोबारा आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं कि देखें ये असल में ये है कि जो वो कह रहे हैं कि क्वांटम वैक्यूम में स्पेस पाई जाती थी एनर्जी के साथ, ये वो बीज है, ये शुरू में मैंने उसको दिखाया, जाहिर है उसको दिखाना तो मुमकिन नहीं है, तो एक मैंने धुएं की शक्ल में उसको दिखाया। ये जो बीज है, ये जब मदर ऑफ एवरीथिंग हमें मिल जाएगी तो ये इसी के अंदर कुवत पाई जाती है इन सारी चीजों में ढलने की, हैरत अंगेज चीजों में ढलने की, और वो ढलती चली जाएगी इन सारी सूरतों में। तो ये जिसको हमने एक्सप्लेन करना था ये उसी को मान लिया गया है कि वो गिवन है। तो जब आप इसको गिवन मान लेंगे, मुझे ये दे दें, मैं आपको कायनात जो है वो प्रोड्यूस कर दिखा दूं। तो अच्छा, अब हमने यहां से शुरू किया है अपना जो खुदा का आर्ग्यूमेंट है और हम देख रहे हैं कि क्यों हमें खुदा की जरूरत है। पहली बात, ये पोटेंशियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये एरिस्टोटल ने इसको पेश किया सबसे पहले पूरी कुवत के साथ, जा रहे पहले भी मौजूद होंगे ये कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उन्होंने इसको पेश किया और फिर एक बरतर तखलीकी कुवत की तरफ एक इशारा किया, उसको भी हम आगे देखते हैं कि ये फिर कॉन्सेप्ट कैसे तब्दील होता हुआ आगे इवॉल्व होता हुआ हम तक पहुंचा। लेकिन एनीवे उसके अंदर ये कुवत मौजूद पहले से होनी चाहिए, नहीं तो कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। जाहिर है कि बीज के अंदर दरख्त को पैदा करने की कुवत पहले से पाई जानी चाहिए ना, तो अगर वो कुवत नहीं है तो वो दरख्त कैसे पैदा होगा उस बीज में से। अच्छा, फिर आप देखें कि ऑल दीज एग्जिस्टेंस, जो ये एग्जिस्टेंस बनते चले जा रहे हैं उससे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो और गैलेक्सीज बनती जा रही हैं, उसके बाद फिर स्टार्स बनते जा रहे हैं, हैवी एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ कुव्वतें हैं ना जो कि एक तरतीब के साथ जहूर कर रही है। ये कोई इसी इस तरह नहीं है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कोई चीज इधर गई और कोई चीज उधर गई और तमाम चीज तबाह होगी, बल्कि चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। किसी ये लग रहा है कि किसी किसी गोल की तरफ जा रही है, लग क्या रहा है बल्कि जा रही है किसी एक गोल की तरफ, उसमें से जिंदगी वजूद में आ रही है, हैरत अंगेज चीजें वजूद में आ रही हैं। तो देखें ऑल दीज एग्जिस्टेंस, जो भी ये एग्जिस्टेंस वजूद में आ रहे हैं उस बीज में से, देन प्रूव टू बी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप अ यूनिवर्स विच इज अ मार्वल ऑफ क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी, अटेंशन टू डिटेल, हार्मनी, कंसिस्टेंसी, रोबोस्टनेस, मीनिंग, प्रोविडेंस एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये बहुत सोच समझ कर इख्तियार किए गए हैं। देखिए एक एक चीज पर आप गौर करें कि ये जो चीजें बनती चली जा रही थी, इसमें ये हम तसव्वुर कर सकते हैं ना कि कोई ऐसी चीज बनती जो कि इस सारे निजाम को दरम बरम कर देती, जैसे कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो किसी जगह पर एक्सप्लोड करे तो सारी चीजें तबाह हो जाती। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये कायनात के अंदर देखें जो नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैटर है, एंटी मैटर है, बहुत मुख्तलिफ कुवतें और ऐसी कुवतें जो कि आपस में मिलती हैं तो एक धमाका होकर वो खत्म हो जाती। तो ये हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये जितने पार्ट्स वजूद में, पहले तो पार्ट्स वजूद में आया ना, लेकिन ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, वो पार्ट्स हैं, उन्हीं से जो ये तमाम की तरह तमाम प्रोटॉन्स और जो न्यूक्लियाई हैं एटम्स के वो सारे बनेंगे और सब कुछ होगा। अब वो क्या होगा, वो बनेंगे तो वो ढलते चले जाएंगे स्टार्स में या गैलेक्सीज में, वो गैसेस इकट्ठी हुई, गैलेक्सीज बने, सब कुछ हुआ उसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, वो जो स्टार्स के अंदर जब स्टार्स फटे, इवन के इतना डिस्ट्रक्टिव इवेंट हुआ, उसके अंदर नए एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए जरूरी थे वो पैदा होना शुरू हो गए। तो देखिए एक से दूसरी चीज फूटती चली जा रही है और बाहम मुतजाद चीजें कितनी मौजूद है यहाँ। मैंने आपको बता दिया कि जब वो शुरू में कायनातें जो बाउंड्री टूट रही थी, जिनको मल्टीवर्स कहते हैं, उसी में मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स पाए जाते थे। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ करीब आते हैं और करीब आते हैं तो एक दूसरे का वजूद खत्म कर देते हैं, वो फिर तहलील हो जाते हैं और एनर्जी उसमें से निकलती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं वो मुख्तलिफ कुव्वतें नहीं कहना चाहिए, मुख्तलिफ जो है एंटिटीज हैं वो बनती चली जा रही हैं, और वो एंटिटीज ऐसी हैं कि आप इसको अगर एक मिसाल से समझना चाहें तो कोई एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें पहले जहाज के तमाम तर या कार के तमाम तर पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो पार्ट्स अब इतने हम आहंग होते हैं आपस में कि उनको आप बुलाते हैं तो उससे जहाज बनता चला जाता है। तो हमारी कायनात की भी बिल्कुल सूरत हाल वो ये है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम मालूम होता है जो कि चीजों को बनाता चला जा रहा है और नई नई उसमें से जो रियलिटीज हैं, नए नए फिनोमिना हैं, नई नई चीजें हैं हैरत अंगेज किस्म की, वो फूटती चली जा रही। तो ये हुआ कि ये ऑल दिस एग्जिस्टेंस देन प्रूव टू बी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया बजाय इसके कि तबाह करते हैं। तो शेप अ यूनिवर्स कि वो एक ऐसी कायनात को बनाए विच इज अ मार्वल ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि हमें मालूम होता है कि एक मार्वल है क्रिएटिविटी का, कि उसमें उसने तखलीक पाई जाती है, ठीक है। यानी इंसान जो है अगर हम अपने हवाले से देखें तो उसको मार्वल ऑफ क्रिएटिविटी ही हम कहेंगे, यही उसके लिए मौजूद लफ्ज होगा। खुदा की तरफ से देखें तो वो अभी इसमें कुछ सवालात रहेंगे कि ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, इसमें फिर भी क्रिएशन के अंदर कुछ ना कुछ नकायस वगैरह पाए जाते हैं, जैसे हम में बीमारियां होती हैं सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इंसान की नजर से देखें बिलिजमाल तो एक मार्वल ऑफ क्रिएटिविटी ये लगती है कि किसी ने किसी की ये तखलीक है, इसके अंदर हुसन पाया जाता है। एक तो बनाने के अंदर हुसन है, या एक बनाने की बनाई गई है इसका तासुर पाया जाता है, और उसके अंदर फिर खूबसूरती पाई जाती है। ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको एक होल में जोड़ा गया और एक पूरा के पूरे सिस्टम्स उससे वजूद में आ गए, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स होल्स वजूद में आ गए हैं उससे। जैसे कि आप देखें कि हमारे अंदर भी जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ा जाएगा तो मैं क्या हूं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंफिग्रेशन में या स्ट्रक्चर में मेरे अंदर मौजूद है। अटेंशन टू डिटेल, कि डिटेल डिटेल के अंदर हमें ये नजर आती है कि आप इवन ह्यूमन सेल को देखें, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसके अंदर हमें डिटेल लेवल के अंदर ये हमें चीजें नजर आती हैं कि उनमें बारीकियों का भी ख्याल रखा गया। हार्मनी, हार्मनी वही जिसका मैंने जिक्र कर दिया कि चीजें हार्मोनाइज तरीके पर एक दूसरे को किसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं और होल्स बनाते चली जाती हैं। कंसिस्टेंसी, ये जी लॉस की तरफ इशारा करते हैं कंसिस्टेंसी के। मिसाल के तौर पर पानी जो है वो अगर अमेरिका में दूसरी तरह से बिहेव करता हो और यहाँ पर दूसरी तरह से बिहेव करता हो, तो कोई पानी के बारे में कोई कानून, जिनको हम लॉस कहते हैं कि पानी अपनी सतह को हमवार रखता है, इस किस्म की कोई चीज वजूद में ना आ सके और निज़ाम इस तरीके से यानी धर्म भरम हो जाए कि कोई साइंस, कोई वो हमारे हाथ में कोई एक जो कंसिस्टेंट नॉलेज होता है या तमाम लोगों का जिस पर एक यूनैनिमस कॉन्सेंट होता है, वही हमारे सामने ना आ सके, साइंस नहीं बन सकती। और ये कंसिस्टेंसी इसलिए भी जरूरी है कि कोई किसी भी चीज का वजूद नहीं रहेगा। आप जरा सा खला में जाएं तो यही पानी जो कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको आपको एक आपकी प्यास बुझाता है, आपकी ये जिंदगी की जरूरत पूरी करता है, इसको आप अमेरिका में चले जाए तो वही पानी जहर बन जाए, जरा सा खला में चले जाए तो वही पानी आपकी सारी ये चीजों को मेल्ट करना शुरू कर दे। तो देखिए कंसिस्टेंसी ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ऐसे ही है। ये वही चीज है कि जो कहा गया बार बार सूरह रहमान में कि तुम अल्लाह ताला के किन किन शानों को झुटलाओ। तो देखिए इसमें फिर ये चीजें पाई जाती हैं, उनके अंदर रोबस्टनेस भी है। रोबस्टनेस से मुराद मेरी ये है कि चीजें छुई मुई नहीं है, हालांकि इतना डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम है, इतना फाइन ट्यून सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर भी चीजें जो है थोड़ा सा कोई किसी जगह पर कायनात में धमाका हो जाए तो पूरी की पूरी कायनात तबाह नहीं हो जाती। तो इस तरह से नहीं है। देखें 14 बिलियन ईयर्स से, ऑल दो ये हम इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं गैसेस, लेकिन 14.5 बिलियन ईयर्स से कायनात मौजूद है, और दुनिया जमीन जो है 4 बिलियन ईयर्स और यू नो एक्सेट्रा, जो भी हम कहें मुख्तलिफ जो एस्टिमेट्स हैं, और बहुत करीब करीब हैं ये एस्टिमेट्स, मौजूद है। तो देखिए रोबस्ट है तो मौजूद है ना, ऐसा नहीं है कि ये आसानी से फट जाए या आसानी से हवा में तहलील हो जाए। और इसके अंदर जो मीनिंग पाया जाता है, ये इसको भी हम इन सारी चीजों की मिसालें कुछ देखेंगे, हम मीनिंग पाया जाता है जैसे कि जिंदगी इटसेल्फ एक एक मीनिंग है। देखिए ना एक एक तरफ से जिंदगी का आगाज हुआ सिंपल से, और करते करते ही माँ के पेट में भी बिल्कुल एक सिंप्लिसिटी से आगाज होता है, मुर्दा सी एक चीज होती है और उससे बनते बनते एक पूरा ऑर्गेनिज्म निकल आता है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म का आपके बच्चों की अपनी पूरी दुनिया होती है, अपने उसके अंदर एक मानवीयत पाई जाती है, उसे फैमिली वजूद में आती है और क्या क्या कुछ होता है। तो ये प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब ये होता है कि ये कायनात के अंदर हर चीज की जो जरूरियात है वो पूरी हो रही है। ये जो इंसान है उसकी यहां तक भी कि उसके अंदर एस्थेटिक सेंस है, तो उसकी खूबसूरती और बदसूरती की भी, ऐसा हो सकता था कि हमारे जो सिर्फ खुराक की, जैसे ढोर ढंगरों के आगे आप खुराक डाल देते हैं उसके अंदर बदबू भी हो तो वो खा लेते हैं, इसी तरह हमारे फलों के अंदर भी बदबू होती, नहीं वो खुश जायका होते हैं। यानी फल जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन आप साइड आपकी पूरी करते, वो उनके अंदर जायका ना होता, उनकी खुशबू ना होती, नहीं फूल भी हैं, रंग हैं, आप देखेंगे जो रंग भी हैं, ये जैसे इसकी तहलील कर बताया था जो एनलाइटनमेंट के जॉन लॉक ने, कि ये रंग भी आपके जो आपका जो जो जहन है वो कायनात के अंदर रंग पैदा करता है। तो ये चीजें इनहेरेंटली इस तरह नहीं है कि चीजों का रंग पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो चीज रखी गई है और उसकी अप्रिसिएशन रखी गई है। तो ये यहां तक भी आपकी इवन जो सिर्फ मादी जरूरियात को ऐसे नहीं पूरा कर दिया कि जैसे हम ढोर डंगरों के आगे चीजें डाल देते हैं, बल्कि आपके अंदर जो भी चीज पाई जाती है उसके तस्कीन के, जिस भी चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं अपने अंदर से, उसके लिए कायनात में वो उसकी तस्कीन के लिए चीजें हैं, रंग है, मौसीकी है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो अब इन चीजों की कुछ मैं कंक्रीट मिसालें आप लोगों के सामने पेश करूंगा, और जो कि मैंने पहले ही बहुत इसको खोल दिया, लेकिन फिर हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि कमरे में बैठे हुए अचानक से बंदा ख्याल जहन में लाता है कि ये खुद से हो गया होगा, ये खुद से हो गया होगा, तो वो पिक्चर ओझल होना शुरू हो जाती है। हमें ये याद दहानी जरूरी होती है कि हम डेटा में जाएं पहले, जो हमारे इर्द गिर्द डेटा है, जिस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है उस चीज को हम देखें, उसके अंदर उतरें और फिर देखें कि इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना। तो ये डेटा पूरा का पूरा आपके सामने मैं साइंटिफिक तरीके पर रखता हूँ। तो देखें क्या होता है, इट फॉर इंस्टेंस एविंस सेज कि ये हमें कायनात जो है वो पूरी कुव्वत से, एक ऊजिंग इसके अंदर चीज पाई जाती है, पूरी कुव्वत से हमें ये चीज दिखाती है। ایکسکویزٹ کرافٹمینشپ کہ لگتا ہے کہ کسی نے اس کو بنایا ہے. اس کی مثالیں کہ فرام اے پرل, ایک آپ جو پرل نکلتا ہے سمندر سے اس کو آپ دیکھیں, چیری بلاسم کسی ایک پھول کو دیکھیں, نائٹنگیل کو دیکھیں جو آپ کے جو کوئل ہے, جو آپ کے باپ مختلف پرندے ہیں وہ کیسے گیت گاتے ہیں, ٹو فیورڈز آپ جو بیوٹیفل فیورڈز ہیں ناروے کی وہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں, یا باقی جگہوں پر جو کینیڈا کے اندر پائی جاتی ہیں آپ اگر ان کو نہیں بھی جانتے تو آپ اپنے جو مناظر ہیں ذہن میں پاکستان کے اندر, جو ندی نالے ہیں, جو پلینز ہیں پہاڑوں کے اوپر اور جو خوبصورتی ہے اس کو ذہن میں لائیں, رینبوز ہر آدمی سے واقف ہے. اور یہ صرف ہماری کائنات کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ ملکی وے تک چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک سٹرکچر نظر آئے گا. گیلیکسیز کے اندر بھی بعض تو سٹرکچر کے بغیر ہوتی ہیں, وہ ایولوشن کی کسی نہ کسی اس کے اندر ہوتی ہیں, سٹیج کے اندر ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسپائرل گیلیکسیز ہیں, مختلف شیپس کی گیلیکسیز ہیں, اوپر بھی پورا کا پورا جو چیز ہے وہ کوئی مادے کے ڈھیر نہیں پڑے گا بلکہ وہ ایک منظم ڈھیر ہے, یعنی منظم جو سٹرکچرز ہیں کہنا چاہیے, میگا سٹرکچرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میتھمیٹیکل آرڈر اینڈ یونیفارمیٹی, یہ وہی ہے جس کو ہم لاز آف فزکس کہہ دیتے ہیں, کہ اس طریقے سے چیزوں کے جو اپنے پوٹینشیلز ہیں, جو ان کے اندر کی قوتیں ہیں وہ ظہور میں آتی ہیں, جیسے پانی کی مثال دی تھی, اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, تو کنسسٹنٹلی یہ ہر جگہ پر ایسے ہموار رکھتا ہے, اور اس ہمواری کی وجہ سے ہم یہ لا اس میں سیلز کر سکتے ہیں کہ پانی ہر جگہ اپنی سطح کو ہموار رکھے گا. ٹھیک ہے, یعنی کم از کم زمین کے اوپر یا انڈر دی انفلوئنس آف گریویٹی جو بھی ہے. تو یہی چیزیں ایکولز ایم سی اسکوائر, بعض جگہوں پر جو ہم ایکولز ایم سی اسکوائر بیان کرتے ہیں وہ اس ریلیشن سے انرجی اس میں سے نکلتی نہ ہو, تو آپ کا جو دیکھیں وہ اٹامک بام ہے, وہ آپ کا اپنے دشمن پر بام پھینکا آپ نے اپنا, اور چاہے اٹامک ہو یا نہ ہو تو اس میں سے انرجی نہیں نکلی, آپ کا دشمن کبھی جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے کبھی نہیں تباہ ہو رہا. تو اسی طریقے سے آپ ایون یہ نیوٹن کے لاس کو دیکھیں, یہ جو جہاز وغیرہ جن قوانین کے اوپر بنے ہیں, ہمیں اگر کنسسٹنسی نہ پائی جائے کہ ہوا کے اندر یہ چیز ایسے موو کرے گی اور ہوا جہاز کو ٹکرائے گی, انجن ایسے پروپیل کریں گے, اور یہ ساری چیزیں, یہ پورے کے پورے میتھمیٹیکل لاس کی صورت میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں, نہ لکھ سکیں یہ سو ٹو اسپیک لاس جو ہیں, یہ جتنی قوتیں ہی الرٹ اپ طریقے سے ظہور میں آئیں یا یہ وائلیشن شروع ہو جائے سو ٹو اسپیک لاس کی, تو کیا ہوگا کہ آپ جہاز میں اس آرام کے ساتھ, یا اس آرام کیا آپ جہاز میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو, پتا چلے جہاز ہوا میں گیا ہے اور اس نے مختلف طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا, ہوا کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا, وہ تو جہاز کو اب اوپر سے اس کے جیسے سٹرکچر بنا ہوا جہاز کا پروں سے اور اوپر سے گزر کر جہاز کو تھرش دینے کے بجائے جہاز کو نیچے کی طرف لانا شروع کر دیا, اس نے جہاز چلتے چلتے غائب ہی ہو گیا, تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ممکن نہیں رہے. یہ موٹی سی کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں. A finely balanced constructive application of potentially destructive forces. آپ دیکھیں کائنات میں جگہ جگہ پر destructive forces ہیں, لاوا ہے, آگ ہے, مختلف ستارے ٹکرا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اتنی destructive جو forces ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ constructive چیزیں پیدا ہوتے چلی جا رہی, ایسا نہیں ہوا کہ ان ساری چیزیں تباہ کر کر آپ کو تو کائنات کو وہ بیٹھ گئی, بلکہ وہ اتنا ان کے اندر ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ جہاں پر آگ ہے وہاں پانی ہے, اور ان کا ایک ایسا بیلنس ہے کہ وہ دونوں انٹیگنسٹک اینٹیٹیز ہیں, ایک دوسرے کی متضاد ہیں, لیکن وہ اس ایسے ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں کہ دونوں اپنے اپنے فنکشنز پرووائڈ کر رہی ہیں, اور کائنات یا ہماری زمین یا جو بھی آگ اور یہ ساری چیزیں, پانی بے شک موجود نہ ہو لیکن ٹھنڈک اور آگ تو یہ کانسیپٹس تو موجود ہیں نا, یہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان میں ٹکراؤ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے بہت ساری, جو پہلے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ مختلف قسم کی خوفناک ترین فورسز پائی جاتی ہیں, لیکن وہ ایک ہم آہنگ ہول میں ایک دوسرے کے ساتھ بہم متعلق ہوتی ہیں, اور وہ بجائے تباہ کرنے کے ڈسٹرکٹیو فورسز کے طور پر کام کرنے کے, وہ کنسٹرکشن کرتی چلی جا رہی ہیں, بناتی چلی جا رہی ہیں نئی چیزوں. تو دیکھیں یہ ہارمونی اینڈ کوہیرنس امیڈ دی کو ایگزسٹنس آف اپوزٹ اور ایون انٹیگونسٹک اینٹیٹیز, فار انسٹنس الیکٹرونز اینڈ پروٹونز, میٹر اینڈ اینٹی میٹر ریسپیکٹیولی. دیکھیں یہ مختلف قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں, इसी का ये जिक्र है कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिलते हैं उससे एक एटम बन जाता है। देखें आपस में बनते भी हैं, फिर मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के बजाय एक नई चीज तकलीक करते चले जाते हैं। मैटर एंटी मैटर की मिसाल दे चुका हूं, इसकी कुछ अभी मिसालें आपके सामने और पेश करूंगा थोड़ी देर में। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ सस्टेन्ड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जाम्पल दैट फाउंड इन न्यूटन साइकिल्स एंड अदर नेचुरल सिस्टम्स। देखिए नेचुरल सिस्टम्स को बजाहिर देखा जाए तो कोई ऐसी कुवत नहीं है जो कि उनको सुपरवाइज कर रही हो, उनको चला रही हो, लेकिन आप देखें आपको पूरा का पूरा जो जिस्म के अंदर कार्बन पाया जाता है उसके लिए कार्बन साइकिल मौजूद है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। ये एक ही तरह का कार्बन है जो कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा है। ये कभी किसी डायनासोर का हिस्सा होगा, ये कभी किसी और जानवर के जिस्म का हिस्सा होगा, कभी ये किसी पौधे का हिस्सा होगा। तो देखें कार्बन जो है वो कमोबेश इतनी ही क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन रिसाइकल हो रहा है। और आप खाना खाते हैं, पौधों को खाते हैं, उसके बाद आप में से फुजला खारिज होता है, फुजला जो है वो वापस जाता है, वो पाक साफ होता है, रिसाइकल होता है, नए उससे पौधे पैदा होते हैं, और वो रिसाइकल करने का पूरा निजाम मौजूद है जिसमें बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए होते हैं सारे उसमें, और फिर उससे वो प्लांट या एनिमल बन जाता है, उसको आप खाते हैं, और फिर वो सारा सिस्टम चलता चला जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक वो इसी कार्बन साइकिल के अंदर अपना एक साइकिल है, एंड सो ऑन, नाइट्रोजन का अपना साइकिल है। तो देखिए कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो खुद ब खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ सस्टेन कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी उनको वो अपने आप ही चलते चले जा रहे हैं, और उनको कोई हमें ऐसा बजाहिर नजर नहीं आता कि उनको बार बार उनको ट्वीक्स करना पड़े या उनके अंदर चेंजेस करनी पड़े, नहीं, वो चलते चले जा रहे हैं। देखें एफिशिएंट मींस टू मीनिंगफुल एंड्स, टेक फॉर इंस्टेंस द रेन, आप इसमें कायनात में एफिशिएंट मींस मौजूद हैं मीनिंगफुल किस्म के एंड्स प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इसमें मैंने मिसाल पेश की है रेन की, प्रोड्यूसिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन विच इन टर्न नरिशेस द एनिमल किंगडम। ये देखिए बजाहिर तो सिर्फ बारिश है, उसको अकेला देखे तो पानी आसमान से बरसता है, नहीं, लेकिन होता है क्या, उस पानी से तमाम किस्म के नबादात पैदा होते हैं, और वो क्या फिर करते हैं, वो एक मीनिंगफुल, यानी ये कैसे बनती है रेन, कि वो तमाम तक पौधे पैदा करती है और वहीं तक बात नहीं रह जाती, बल्कि उस पौधों को फिर वो सस्टेन करती है एनिमल किंगडम को, जो 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 पौधों की पैदाइश है वो एनिमल किंगडम को सस्टेन करती है। तो देखें कि ये इस किस किस्म की मानवीय जो है वो कायनात के अंदर पाई जाती है। और फिर आप देखेंगे वायबिलिटी एंड सस्टेनेंस फॉर नॉट ओनली सेंटेंट बट इंटेलिजेंट लाइफ केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग ऑल दीज वंडर्स। सबसे बड़ा वंडर ये है कि करते करते यहां तक ये मामला पहुंचा कि जिंदगी वजूद में आ गई, और जिंदगी भी इंटेलिजेंट जिंदगी। अब देखें गधे की जिंदगी भी एक एतबार से इंटेलिजेंट जिंदगी होती है कि गधा जो है दीवार में टक्कर नहीं मारता, दीवार आए तो वो मुड़ जाता, और ये इंटेलिजेंस भी अपनी पूरी जो जो पूरे अपने शान के साथ जहर पजीर हुई इंसानों में। आप देखें कि एक मुर्दा कायनात से कैसी हस्ती वजूद में आ गई है जो कि इस कायनात को देख सकती, इसके वंडर्स को समझ सकती, इसमें से कवानीन को अखज कर सकती और इस सब पर बात कर सकती। तो ये क्या अंधी बहरी कुव्वतें आप समझते हैं कि ये इन सारी चीजों को वजूद में ले आएंगी? तो ये इस तरफ मैं इस आर्गुमेंट को लेकर आ रहा हूं। देखें ये मोटी सी कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। ये इसमें कुरान मजीद ने भी कुछ मिसालें दी हैं, जैसे रात और दिन है, कुरान मजीद ये इस आर्गुमेंट को यूज करता है, लेकिन वो खुदा के वजूद के लिए नहीं बल्कि खुदा के एक होने के लिए या आखरत वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा के मुनकर नहीं थे कुरान मजीद के पहले मुखातिबीन। तो जो मुशरिक भी थे वो उनमें से कोई भी खुदा का मुनकर नहीं था। तो ये देखिए इसमें जो मुख्तलिफ मिसालें हैं, रात और दिन की मिसाल, मेल और फीमेल की अपनी मिसाल, दोनों देखा जाए तो एक एतबार से जिद हैं, दूसरे एतबार से पूरा का पूरा कारखाना इंसानों का खानदान इससे चलता है। आप ये देखें कि कुरान मजीद ने मिसाल दी है गाय की कि इसके अंदर खून भी होता है, गोबर भी होता है, उसमें से सफेद धारियां दूध की हम लेते हैं और वो फिर आगे नरिश करता है। तो ये एक पिक्चर आपके सामने एक रखना चाह रहा था कि ये हमारा डेटा है। आप देखें कि जो मैंने अपनी ये नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने एक मिसाल उसकी पेश की है, मुख्तलिफ साइकिल जो आपके सामने मैंने जिनका जिक्र किया, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको भी एक बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बहुत सारी डिटेल्स निकाल कर मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश की है। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरी डॉक्टरेट थी वो एक बैक्टीरिया के ऊपर थी जो कि यहां से जो डिकम्पोज करता है मुख्तलिफ चीजों को, डिकम्पोज जब करता है मैटर को, तो उसमें फिर वो ये करता है कि नाइट्रोजन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है, तो उस बैक्टीरिया की भी मुख्तलिफ जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ, जो कि वो उन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन की गैसेस को, और बहुत बड़ा उनका ये बीच में एक आप समझ लें कि कारनामा होता है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा इनपुट है इस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बैक्टीरिया का भी, उसके एंजाइम्स के अंदर पूरी की पूरी मेरी जो डॉक्टरेट था वो था। तो आप देख लें कि ये क्या क्या हैरत अंगेज चीजें, डाउन टू द वेरी डिटेल, वेरी लो लेवल, बड़े से भी शुरू करें तो पूरी कायनात भी, और छोटे से छोटे भी आपको पता लगता है कि हैरत हैरत में इजाफा ही करती चली जाती है साइंस आपके। तो ये इस किस्म का ये माजरा है। अब हम इस आर्ग्यूमेंट को रैप अप करते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, सच ग्रैंड डिजाइन एमिनेटिंग फ्रॉम द पोटेंशियलिटी इन ब्रेन विद इन एनर्जी और मैटर एविडेंटली डिमांड्स। ये देखिए, वो एक वो धुआं था शुरू में, या जिसे क्वांटम वैक्यूम कह लें या एनर्जी कह लें, वहां से सारी चीजें फूटती चली जा रही हैं, उसकी अंदर ये सारी कुवतें थी ये सब कुछ पैदा कर देने के पैदा कर देने की। तो आप क्या करेंगे, आप अब सोचेंगे कि एक चीज है, मैं आपको इसकी एक एनालॉजी देता हूं कि आप किसी चले जाएं किसी सहरा में, वहां पर बहुत सारे एक ढेर लगे हों ये पत्थरों के या रेत के टीले हों, किसी आप ऐसे वीरान किसी इलाके में चले जाएं, वहां पर आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोई प्लांट मिल जाए जो कि मर्सिडीज बेंज को प्रोड्यूस कर रहा है, पहले उसके पार्ट्स प्रोड्यूस करता है उसके बाद मर्सिडीज बेंज, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ, यानी वो पार्ट भी आप जो जो प्लांट है वो भी आप सोचें कि खुद ब खुद वो बनता चला जा रहा है, आपकी बहुत लंबी उम्र है, मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए आप जिंदा रहते हैं, आपके सामने वो खुद ब खुद चीजें इकट्ठी होती हैं, एक प्लांट बनता है और प्लांट के अंदर फिर पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, वो पार्ट्स इकट्ठे आते हैं और उसके बाद मर्सिडीज बेंस निकलना शुरू हो जाती है आपके सामने। तो अब आप आपके सामने ये डेटा है, इस डेटा से आपने इन्फर करना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, एक थियरी पेश करनी है, ठीक है, या एक हाइपोथेसिस आप उसको कह लेंगे, उसको लोअर करना है तो जनरेट करने के लिए, तो ये डेटा हमारे सामने आएगा, मैं इस डेटा में से ये इन्फर कर रहा हूं, जो कायनात का डेटा है, इसकी ये एनालॉजी आपके सामने पेश की थी छोटी सी मिसाल ताकि बात समझ में आ जाए, कि इसमें हमें इमेंस इंटेलेक्चुअल इनपुट चाहिए कि कोई ना कोई इसमें कोई किस किसी किसी जहानत का ये जहूर है, इसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट डाली गई है, उसके बगैर ये कैसे हो सकता है कि अंधी बहरी कुवतें जो है वो इस तरह की मीनिंगफुल चीजें आप से आप बनाती चली जाए, और वो अंधी बहरी कुवतें जो कि तबाहकुन ज्यादा है देखने में, बजाय इसके कि वो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव वो ज्यादा है। इसके लिए अगर हमें कोई ऐसी चीज बनानी, कोई ऐसा प्लांट बनाना है या कायनात बनानी है, हमें इसके लिए क्रिएटिव इमेजिनेशन भी चाहिए। देखें, आपने कोई इवन फर्नीचर भी बनाना होता है तो बनाने वाला जो पहले आप नक्शा बनाएगा, पहले सोचेगा जहन के अंदर, तो उसको इमेजिन करेगा, क्रिएटिव इमेजिनेशन उसके लिए चाहिए, उसके बाद फिर वो प्लान को, या आप जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पहले सोचते हैं उसके बारे में और उसके बाद फिर उसको जोर पजीर करते हैं, तो एक विजन चाहिए हमें उसके लिए, और एक प्रिसियंस चाहिए। ये क्या है, प्रिसियंस का क्या मतलब है, ये भी अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा, वो जो तरखान को चीज बना रहा है उसको पता होना चाहिए कि जब मैं ये मेज बनाऊंगा या ये कुर्सी बनाऊंगा तो कल को इस पर कोई शख्स बैठेगा या मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर वजन डाला जाएगा तो ये कलेप्स ना कर जाए, अगर ये प्रेसियंस नहीं होगा उसके अंदर तो वो जो चीज बनाएगा, खास तौर से कायनात को देखें ना, कायनात को अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर तो इतनी इंट्रिकेट और इतनी कॉम्प्लेक्स कायनात है कि वो ये पहले से ना पता हो तो वो बिल्कुल तबाह हो जाए 2 मिनटों के अंदर, को जाइए कि 15 अरब साल से वो कायम है। देखिए, सगेसिटी, ये कहते हैं कि जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, बल्कि उसको हम प्रूडेंस से कहेंगे जो आगे चीज आएगी, सगेसिटी ये होती है कि प्रैक्टिकल विजडम चाहिए आपको, कि आपने फिल फॉर कोई जजमेंट देनी है और वो जजमेंट साउंड जजमेंट होनी चाहिए, ऐसी जजमेंट ना हो मिसाल के तौर पर जैसे कि मिसाइल आ रहा होता है किसी उधर से, तो आपका उसमें, या मिसाइल किसी जो एरोनॉटिकल जो पायलट्स होते हैं, फाइटर पायलट्स होते हैं, उनको ये पता होगा कि मिसाइल जब F-16 के पीछे आ रहा होता है तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, उसमें आपने एक साउंड जजमेंट करनी होती है कि ये मिसाइल जो है इससे मैंने जहाज को ऐसे मोड़ना है और वो ऐसे निकल जाए, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है जहाज के साथ, वो मिसाइल जो है ना वो उसके लोहे के उसके पीछे पीछे जाएगा और अट्रैक्ट करेगा उस जहाज की तरफ वो जाएगा, तो उसको आपने डॉच करना होता है। इसके लिए आपको सगेसिटी चाहिए, एक अच्छी जजमेंट चाहिए फौरन ही। तो ये सगेसिटी कायनात को बनाने के लिए पूरी कुव्वत से चाहिए, जैसे कि डेटा से साफ का साफ नजर आ रहा है। फिर इस कायनात में जो खूबसूरती होती है, जो उसके पीछे एक सेंस ऑफ एस्थेटिक्स पाया जाना चाहिए, उसमें एक खूबसूरती बदसूरती का सेंस पाया जाना चाहिए। जो भी क्रिएटिव चीजें हैं कायनात को जिन्होंने वजूद में बख्शा है, उनके अंदर ये एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। तो देखें, ये मैं अब बयान करता चला जाता हूँ, प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अंदर मनूवर्ड मटेरियलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ पावर, जैसे कि एनर्जी और रिसोर्स है उसकी अलर्ट अप तरीके से। तो अगर आप माचिस की एक एक रगड़ते हैं उसको, उसमें से आग प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी जो है, इस एनर्जी को आप कंस्ट्रक्टिवली, जो एनर्जी अचानक से प्रोड्यूस होती है जैसे बम का धमाका होता है, इसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजिस्ट जानते हैं कि हमारे अंदर इसीलिए जो एटीपी की एनर्जी होती है वो स्लोली 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 एनर्जी जो है वो खारिज होती है, और उसका जो स्लो खारिज होना होता है वो यूजफुल तरीकों पर फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मिसाल है कि मैन्यूवर्ड मटेरियलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ पावर के, जो पावर्स की है जितनी कुवतें हैं, इनकी मटेरियलाइजेशन हो रही होती है और इनकी एप्लीकेशन हो रही है, ये बड़े एक मैन्यूवर्ड तरीके से, बड़े एक एक रैशनल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से हो रही होती है। अलर्ट अप तरीके से आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और सब कुछ खत्म कर कर आप बैठ जाएंगे। तो आप देखें प्रूडेंस, ये है कि प्रूडेंस का मतलब ये है कि आप रिस्क को अवॉइड करें और एक आप फ्यूचर पर आंख रखें। जैसे कि प्रूडेंस की एक अच्छी मिसाल ये है कि चींटियां जो हैं वो कैसे अपना खाना जमा करती हैं, और वो खाना को जमा करती हैं समर में और विंटर्स में फिर उनको इस्तेमाल करती हैं। तो देखिए, एक फिर कायनात के अंदर और हमारे अपने इंसान के अंदर, अपने नफूस के अंदर, हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस पाई जाती है, कोई जख्म लग जाता है उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है उसको हील करने के लिए। तो कायनात के अंदर भी इसी तरीके से है कि एक किस्म की जो मेंटेनेंस या ड्यूरेबिलिटी है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर ये खुद बहुत से हो रही होती है बाहर देखा जाए तो वो भी चीज पाई जाती है। और सस्टेनमेंट, सस्टेनमेंट वही के जी, ये चीजें इनका क्याम है, क्याम व इंसराम भी कायनात की जिसको कहा जाता है, वो एक हकीकत है। तो देखें, अब मैं आर्गुमेंट के जो जो पिनकल है उसकी तरफ आपको लेकर आऊंगा। एंड ऑल दिस इज अनथिंकेबल विदाउट बट नॉट लिमिटेड टू, कम अज कम ये जो जितनी चीजें हैं ये चीजें पाई जानी चाहिए कम अज कम, और ये चीजें मुमकिन ही नहीं हो सकती कि आपके पास इंफिनिट नॉलेज हो, इंटेलेक्ट हो, विजडम हो, विल एंड वोलिशन हो, यानी एक तो इरादा आप करें, ख्याली पुलाव पकाएं, तो उसके साथ आपके पास पावर और अथॉरिटी भी होनी चाहिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की, और पहले कंट्रोल तो बाद में होगा, पहले वजूद में लाने की पावर और अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो देखें, ये सारी चीजें कि आपके पास इन्फिनिट नॉलेज होना चाहिए, इंटेलेक्ट होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए, विल वोलिशन और पावर और अथॉरिटी, सिंस दिस मैनिफेस्ट योर मेंटल क्वालिटीज not attributable to mindless matter, energy or any material cause, ये mental qualities है, ये किसी person के अंदर ये qualities होंगी, ये personal qualities है, ठीक है, ये किसी अंधी बहरी कुवतों के साथ हम इस इन qualities को नहीं जोड़ सकते। तो हमारा जो data है ये empirical evidence है, जिस तरह बिल्कुल हम साइंस के अंदर एम्पिरिकल एविडेंस देखते हैं उसी किस्म का डेटा आपके सामने पेश किया है, compels us to infer the existence of a mind, the grand designer। तो ये इससे हम इन्फर करते हैं कि बड़ा बरतर जहन होना चाहिए कायनात के पीछे, और उस जहन को एक्सटर्नल होना चाहिए, सुपर नेचुरल होना चाहिए, कायनात से बाहर होना चाहिए। फॉर एनी माइंड विच इज अ चाइल्ड ऑफ नेचर कैन नॉट लॉजिकली अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन मदर। इसका मतलब ये है कि अगर तो आप कहते हैं कि एलियंस ने सब कुछ कर दिया था, एलियंस तो खुद प्रोडक्ट हुए इस यूनिवर्स के, तो इस यूनिवर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम हैं, जैसे कि हम इंसान, जैसे कुरान मजीद कहता है कि क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए, आप ही अपने खालिक हो, हम अपने आप खालिक नहीं हो सकते, उसकी वजह यह है कि हम तो खुद प्रोडक्ट हैं इसकी, कायनात के। तो इंटेलिजेंसेस कायनात के अंदर जो पाई जाती है वो ये सारी चीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ना एक्सप्लेन कर सकते, बल्कि इस कायनात के बाहर कोई इंटेलिजेंस ऐसी हमें पाई जानी चाहिए जो कम अज कम मैथमेटिशियन हो, जो कम अज कम एक एक जहन रखता हो, ये तो है ना कम अज कम। और उसके बाद फिर डेटा में से पता चलता है कि ये एक बहुत ही बरतर जहन का यहाँ पर जहूर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सारा मामला है कि हम कायनात के पीछे, यानी हम ये कहते हैं कि जो हमारे हवास के जरिए से जो डेटा हासिल होता है, जो कि हमें साइंस की तरफ भी लेकर जाता है, ये डेटा हमें मजबूर करता है इन्फर करें हम इससे कि बरतर कोई बनाने वाला जहन मौजूद है कायनात के पीछे। और आप ये जो आखिरी मैंने बात यहाँ पर बयान की है, इसको मैं एक लफ्ज में बयान कर देता हूँ, वो ये कि ये जो कुरान मजीद भी बयान करता है कि ये, और बाकी इल्हामी मजाहिब भी बयान करते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये सारी चीजें बनी हुई हैं, बल्कि ये बार बार मैंने जैसे जिक्र किया कि 15 अरब साल से ये कायम और दायम है। तो आप जहन के अंदर लाएं कि आपको एक ऑफिस खोलते हैं छोटा सा, उसको आप 2 दिन, एक एक कमरे का ऑफिस हो, 2 दिन उस ऑफिस की सफाई ना करें, 2 दिन उसको मेंटेन ना करें, तो उस ऑफिस का क्या हाल होता है? वो अपना वजूद ही खो देगा, वो बिल्कुल एक खंडर की सूरत इख्तियार कर देगा। कुछ ये कि पूरी की पूरी कायनात इतनी जो इंट्रिकेट हकीकतों के साथ मौजूद है वो अपने आप खुद ही से चल रही हो, और ये अंधी भैरी कुवतें खुद ही से ये तख्लीकी काम कर रही हो सबका सब। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन या टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। खुदा के वजूद के बारे में और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हमने पूरी कुवत से पकड़ा है और इसको हमने यहाँ बयान करने की कोशिश की है। ये इस एविडेंस का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, ये उस तरह से काम करता है जैसे साइंस के अंदर साइंस काम करती है। क्यों? लेकिन डेटा मौजूद है, हकीकतें मौजूद है, उसके एनालिसिस में आप जाते हैं और फिर उससे इन्फर करते हैं एक बरतर जहन कायनात के पीछे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन या टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ये आपको क्योंकि बहुत ही नेचुरल है, यानी आप देखते हैं कायनात को तो वो बनी हुई आपको मालूम होती है, आप वापस चले जाएं उस प्रिमिटिव जो वैक्यूम था जिसमें मैं कह रहा था कि इसको किसने बनाया अगर खुदा ने नहीं बनाया, क्योंकि उससे हैरत अंगेज चीजें वजूद में आती चली जा रही हैं और वो चीजें आपके सामने मौजूद हैं, बनी हुई सूरत में आपको नजर आती हैं, तो उस बनी हुई चीजों से आप इन्फर करते हैं कि इसका बनने वाला को होना चाहिए, बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो ये सोक्रेटिस से भी बयान किए जाते हैं, सोक्रेटिस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर, इनसे भी पहले इसकी बुनियादें, यानी आप समझ लें कि जो भी नॉन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, उसमें आपको ये हर जगह पर मिल जाता है। हिंदू जो फिलोसफी है, लॉजिक है, उसके अंदर आपको मिल जाता है, कुरान मजीद ने इस आर्ग्यूमेंट को यूज किया है, और थॉमस अक्वाइनस का जो 5वां प्रूफ है, इनके 5 प्रूफ्स है ना बड़े मशहूर खुदा के वजूद के बारे में, तो उनका जो 5वां प्रूफ है वो यही है। और इसमें उन्होंने बहरहाल ये जो ग्रीक फिलोसफी है उसको ये करेक्ट किया है कि ग्रीक्स जो है वो एक पर्सनल गॉड को नहीं मानते। एरिस्टोटल के बारे में कुछ पिक्चर मुबहम हो जाती है, लेकिन सोक्रेटिस और प्लेटो से जो पिक्चर सामने आती है वो खुदा को शख्सी खुदा नहीं मानते। तो इन्होंने ये किया थॉमस अक्वाइनस ने कि ये डेटा एनालिसिस में गए और ये बताया कि इसके पीछे शख्सी खुदा होना चाहिए। ये जो तुम कह रहे हो कि एक बरतर गुडनेस पाई जाती है और वो गुडनेस खुद बखुद ये प्रोड्यूस करती चली जा रही है कायनात, या वो एक और आलम है जो कि एक एक जिसमें परफेक्ट गुडनेस पाई जाती है और वो किसी ना किसी तरीके से एक बरतर, आप समझ लें कि उस तरीके से जहन तो नहीं कह सकते जैसे कि एक पर्सनल जहन होता है, बस कुछ गुडनेस है और उस गुडनेस से ही कायनात जो है वो ये उसके मजाहिर है। तो वो बात ये होगी कि वो पर्सनल खुदा को बीच में से, या माइंड इस सेंस में कि कोई पर्सन हो जो कि एक माइंड रखे। देखिए ना, माइंड का क्या, जो सिफात के बगैर जात का कोई तसव्वुर नहीं है, कि ये ऐसी मिसाल है कि आप कहें कि रंग पाए जाए, रंग किसी जगह पाए जाए और वो चीज मौजूद ही ना हो जहां से रंग फूटते हो, तो रंग का क्या तसव्वुर है किसी चीज के बगैर, वो चीज होगी तो उसका रंग होगा। तो ये थॉमस अक्वाइनस ने उनको ये करेक्ट किया, जो हम समझते हैं कि करेक्ट सही किया, कि वो जो तुम कह रहे हो कि एक बेहतर गुडनेस पाई जाती होगी, वो उसको लाजमी एक जहन होना चाहिए, उसको एक पर्सन होना चाहिए, पर्सन ही का एक जहन होता है और उस पर्सन ही में से गुडनेस और सारी चीजें पैदा होंगी और वो उस पर्सन को फिर हम खुदा कहते हैं। थॉमस अक्वाइनस आपको बताया कि बड़े मसीही फलसफी हैं, ठीक है। और ये इस वैसे आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन को मुसलमानों के यहाँ पर इस ये बहुत शाया हो जाए, लेकिन बाज मुसलमान फलसफे इसका इनकार भी करते हैं। तो एनीवे ये जो अभी हमने आर्गुमेंट पेश की है, ये आर्गुमेंट बताता है कि कोई बरतर जहन इसके पीछे, कायनात के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो जहन असल में वो उसका तारुफ क्या है, वो जहन क्या है, वो खुदा जिसको हम बोलते हैं उस जहन को, उसकी सिफात क्या है। वो सिफात जैसे कि एक उसके बहुत उसके पास विजडम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके पास ये और ये होना चाहिए, वो तो कुछ चीजें तो कायनात के तजिए से हमें मालूम हो जाती, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मिसाल के तौर पर इस कायनात के डेटा के अंदर ही, अभी हमने उसको टच नहीं किया, ये चीज पाई जाती है कि इसके अंदर बहुत सारी तकलीफ पाई जाती है, इनजस्टिसेस पाए जाते हैं। तो क्या वो बनाने वाला जो है डेटा में से, क्या ये नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा इनजस्टिस भी है उसके अंदर, थोड़ी सी उसके अंदर क्रूअल्टी भी है, और क्या है? तो ये पूरा का पूरा कि भाई इस तरह की जो बदसूरती भी पाई जाती है कायनात के अंदर, बीमारी तकलीफ भी पाई जाती है, ये क्यों है? इस सारे फिर चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मजहब की जरूरत पड़ती है, या वो खुद खुदा अपना तारुफ पेश करता है कि ये जो तुम्हें बदसूरती या डिजीज नजर आ रही है, इसकी ये और ये वजह थी। यानी ये तो हतमी तौर पर साबित हो जाता है कि कोई बनाने वाला जहन है, इसका इनकार करना मुमकिन नहीं होता। जितने इनकार हुए हैं वो मैं आपको रेफर कर दूंगा, आप वो देख भी सकते हैं, हम इसको जेरे बहस भी ला सकते हैं, वो सारे के सारे बूदी इनकार। एक जहन है, लेकिन वो कौन है, उसकी क्या सिफात है, वो फिर हमें रिलीजन से पता चलती है बात। तो यही इमानुअल कांट जो है, ये गो के खुदा के मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स है खुदा के वजूद के बारे में, उनको ये बताया कि ये हाँ बताते हैं कि कोई एक ऐसी ऐसा जहन होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है, लेकिन क्या वो जहन इब्राहिमी खुदा है जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में वो, तो सिर्फ ये डेटा एनालिसिस हमें वो नहीं बताता, वो हमें वही की जरूरत पड़ेगी, वो हमें बताएगी कि ये उस खुदा की तमाम सिफात क्यों है, उसने ये कायनात क्यों तख्लीक की है, और क्या उसके मकासद हैं, और इसके अंदर जो चीजें भी पाई जाती हैं इस किस्म की जो एक शाबा पेश करती हैं कि हो सकता है कि काफी सारे खुदाओं इसके अंदर मौजूद, तो वो आर्ग्यू करेगी कि ये इसके अंदर ये बहुत सारे खुदाओं की कोई रजमगा नहीं है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसी तरीके से इसके अंदर और मजीद अभी कुछ सवाल बाकी हैं कि वो जो अगर कोई ऐसा बरतर जहन है, उसने अपने आप को छुपा कर क्यों रखा हुआ है, वो हमारे सामने जाहिर क्यों नहीं हो गया। और इसी तरीके से कि जो मैंने आपको अभी जिक्र कर दिया कि अगर वो खुदा एक लविंग खुदा है, तो कायनात में इतनी ईवल मार धाड़ नेचर में और इंसानी जिंदगियों के अंदर इतनी इनजस्टिस वगैरह क्यों पाई जाती है। तो ये जी डेविड ह्यूम जो है, उन्होंने इसको आर्टिकुलेट किया, ये जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल या प्रॉब्लम ऑफ पेन हम कहते हैं, मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा तारफ आपको उसका मिलता चला जाए। और डेविड ह्यूम ही है जिन्होंने फिर ये इसकी बिना डाली कि अगर अगर वो एक बरतर जहन है, तो उस बरतर जहन को भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। इसी को रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी जो द गॉड डिल्यूजन है उसके अंदर उठाया, और फिर बताया कि अगर ये कायनात इतनी कॉम्प्लेक्स कायनात किसी बरतर जहन ने बनाई है, तो वो जहन खुद बड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और उस जहन का अपना कोई बनाने वाला होना चाहिए। तो ये हम खास तौर से, जैसे कि मैंने जिक्र किया कुछ चीजों का, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि फिर खुदा को किसने बनाया। तो ये आपको मैं कुछ मिसालें पेश करना चाहता था, लेकिन उसका वक्त नहीं है, कि ये जो हमने डेटा एनालिसिस में हम गए, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, कि जो हम डेटा एनालिसिस में गए हैं, उससे हमने एक चीज इन्फर की है। इस तरीके को बोलते हैं इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन या एबडक्टिव रीजनिंग। ये एबडक्टिव रीजनिंग आपको साइंस में जगह जगह पर मिलती है, और बल्कि बास फिलोसोफर साइंस कहते हैं कि साइंस है ही ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन। जो इफेक्ट्स हैं, ये जो डेटा है, उससे हम इन्फर करते हैं कि ये चीजें सिंपल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई होंगी, और हमारे सामने ये तो नहीं है ना, हमें क्या पता कि चीजें हम मुशाहिदा करके तजुर्बा करके तो नहीं दिखा सकते। तो हम जितना डेटा हमारे सामने आता है, फॉसिल रिकॉर्ड आता है या बाकी डेटा हमारे सामने आता है, उससे इन्फर करते हैं कि तमाम जानदार एक ही किस्म के जानदार से या कुछ जानदारों की इकसाम से सारे के सारे वजूद में आए होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम नहीं देख सकते, उनको इन्फर करते हैं उनके इफेक्ट से। इसी तरीके से बड़ा एक इंटरेस्टिंग है जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो हम एलियंस की जो सर्च हम करते हैं, इस पर बहुत सारे फिजिसिस्ट ने काम किया, स्टीवन हॉकिंग ने और जो कार्ल सेगन है उन्होंने, और अभी भी इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि हम सिग्नल्स भेजें कायनात में, कायनात से कुछ सिग्नल्स हम लें और उससे हमें पता चल जाए सिग्नल से कि कोई कोई कुछ जहन पाया जाता है कायनात में। वो सिग्नल से कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई ऐसा कोड होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर कोई मीनिंग पाया जाता होगा, कोई स्ट्रक्चर पाया जाता होगा। तो अगर एक भी ऐसा आपके पास कोड आ जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लिख दे रहा हूँ बिल्कुल, कि शेक्सपियर के किसी नॉवल का एक सेंटेंस आपके को मिल जाता है, या कोई मैथमेटिकल लॉ या मैथमेटिकल रियलिटी या थ्योरम मिल जाता है जो आउटर स्पेस से आ रहा है, तो आप इन्फर करेंगे कि कोई बर्तर एलियन जहन पाया जाता है जिसने ये भेजा है यहाँ तक, या कायनात ने उसको भेजा है, और उसको फिर हमारे टेलीस्कोप्स वगैरह उन्होंने वो किया है। इस पर करोड़ों रुपए, ये एक स्टीवन हॉकिंग बैक एक प्रोग्राम भी अभी हाल ही में तश्कील दिया गया, इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? वही कि ऐसा कोई हमारे पास डेटा पॉइंट आ जाए, ऐसी कोई चीज आ जाए, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, तो उससे पीछे हम इन्फर करेंगे कि बरकर जहन पाया जाता है। तो ये वो पिक्चर है जो कि मैं आपके सामने पहले भी पेश कर चुका हूँ, तो ये पूरी की पूरी कायनात की इवोल्यूशन को जो बताती है। और यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इरादा ये था कि यहां से अगर पीछे जाया जाए और ये बताया जाए कि ये जो चीज थी, इसको कह दिया जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स ने खुद ब खुद इसका वजूद बख्श दिया, तो क्या लॉज ऑफ नेचर जो है, जिनका हमने तारुफ आपके सामने मैंने पेश कर दिया था लास्ट टाइम, वो खुद ब खुद कोई ऐसी चीज वो क्या खुद ब खुद कोई चीज प्रोड्यूस, ऐसी चीज क्या वो क्या कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसमें मैं आपको अगली दफा दिखा दूंगा ये कुछ चीजें। तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, अभी कोई अगर दो तीन सवाल वक्त है हमारे पास उसको ले लेते हैं। तो हाँ, ये रिकमेंडेड रीडिंग जो है, ये आपके सामने मैंने किताब, इसको लाजमी देखिएगा आप, बहुत ही अच्छी मुफीद किताब है, और इसके अंदर जो क्लासिकी फलसफियाना प्रूफ्स हैं खुदा के बारे में, यानी कि खुदा किन चीजों से वो साबित होता है, तो उनका तजिया किया गया, बताया गया कि इनके खिलाफ जितने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं न्यू एथिस की तरह से, वो कैसे बूदी और कैसे वो दे डोंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर हम सवालात, अब आप को मैं मौका देता हूँ कि कुछ कर लें, आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की अटेंशन का और साथ रहने का। जी, आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं और जो मॉडरेटर है वो आपका माइक खोल देंगे। तो
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ये मार्वल ऑफ क्रिएटिविटी या मिरेकल ऑफ क्रिएटिविटी में बिल्कुल एक हैरत का एक जहां हमारे लिए खोला, और किस तरह ये मतलब ये एक डिस्ट्रक्शन से एक कंस्ट्रक्शन का होना और मुसलसल होते चले जाना, और इससे तो ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा है ना कि पूरी यूनिवर्स जो है हमारी वो बिल्कुल जीरो डिफेक्ट यूनिवर्स है, सिर्फ इंसानी दुनिया को छोड़ के कि इंसानी दुनिया में प्रॉब्लम ऑफ ईवल पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो है साइंटिस्ट जो खुदा को कभी डिजाइनर का, कभी इंटेलिजेंट माइंड का, तो कभी मैथमेटिकल माइंड का, तो कभी सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी का नाम उनको देते रहते हैं, लेकिन वो खुदा से शायद इसीलिए जान छुड़ाते हैं कि इंसानी दुनिया में प्रॉब्लम ऑफ ईवल पाया जाता है, बाकी तो कायनात जीरो डिफेक्ट है। तो क्या ये इसी तरह यही नहीं आपको महसूस होता?
अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में इसमें मैंने अभी हाल ही में जो मेरी किताब आनी है उसमें पूरा एक चैप्टर लिखा है। अब एक और आइडिया भी सामने आ रहा है जिसको कहा जाता है अन इंटेलिजेंट डिजाइन, यानी इंसान के अपने जिस्म के अंदर भी कुछ ऐसे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, स्पाइन के अंदर और मुख्तलिफ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनका डिजाइन ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, या इसी किस्म की एक बड़े सेंस में आपको मैं बताऊं, इसके बाद पूरी पूरी किताबें भी उन्होंने लिखी जिसको अन इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं। कि अगर मैं मोटी सी कुछ मिसालें दे देता हूं कि अगर डार्विनियन एवोल्यूशन के तरीके पर ही जिंदगी आगे बढ़ रही है, तो डार्विनियन एवोल्यूशन का जो तरीका है वो तो एक बड़ा ही ट्रायल एंड एरर किस्म का एक बड़ा भूंडा सा तरीका है। तो एक अगर बर्तर जहन है जो कि बहुत बर्तर है और अनफैसमेबल, जिसके पास नॉलेज और सारी चीजें, वो उसने ऐसा भूंडा तरीका क्यों अख्तियार किया? इसी तरीके से हमारे अपने अंदर जो डिजीज पाई जाती है, जानवरों में डिजीज पाई जाती है, और जो जो आपको नेशनल ज्योग्राफी के उस पर आप देखेंगे कि जो शेर चीते हैं वो कैसे इवन जानवरों के इन्फेंट्स को चीर फाड़ देते हैं, तो वो बंदर का एक बच्चा है, एक इन्फेंट, एक मैं मूवी देख रहा था, वो शोर कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपको अपने बच्चे की याद आ जाती है, उसके साथ वो खेल खेल के, खेल खेल के आखिर में उसको दो टुकड़े कर देते हैं। तो ये इसको वो लोग कहते हैं कि बैड डिजाइन या अन इंटेलिजेंट डिजाइन भी पाया जाता है। इसको एक्सप्लेन किया है स्क्रिप्चर्स ने कि ये भी क्यों आपको मिलता है साथ साथ, और मैं आपको प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, वैसे प्रोपोर्शन में आप रहेंगे तो ये आपको एक दर्जे में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा छाया हुआ है हर जगह के ऊपर, लेकिन जरूर आपको ये मिलता जरूर है उसके अंदर, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये बात साबित होती है कि जो खुदा बनाने वाला है इसका, वो माज अल्लाह उसके अंदर को जुल्म का उनसर भी पाया जाता है। तो इसको बहुत, यानी इस पर काम भी हुआ है, और थियोलॉजियंस ने भी इसको एक्सप्लेन किया, मैं भी अपनी किताब के अंदर इसको काबिश की है एक्सप्लेन करने की, और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इशारा कर दूं जो मूसा अलैहि सलाम और खिजर की स्टोरी है, उसके अंदर भी इस किस्म का ईवल जो है वो एक्सप्लेन किया गया है एक दर्जे में।
जी, और साइंसदान मौत की बीमारी से भी तो परेशान है कि वो भी खत्म नहीं हो सकती
जी
है
जी 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 वो सारी चीजें तो पाई जाती हैं इसमें। ये बड़ी बहुत लंबी चौड़ी बहस है, ये पूरे एक लेक्चर के अंदर इसको, यानी लेक्चर का एक मौजू होगा।
बहुत
तो
शुक्रिया सर, बहुत तफसील से आपने बहुत अच्छी तरह
जी
बताया कि रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ताला की कुदरत देख के और किस तरह उसने जीरो डिफेक्ट सब कुछ बनाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका भी जी, बहुत अच्छा सवाल था आपने उठाया जी। और सवाल ले लेते हैं
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम
जी, थैंक्स लॉर्ड, जजाकल्ला, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारी डायमेंशंस को क्लियर किया। मेरा एक पॉइंट था इस हवाले से, जो आपका स्टेटमेंट था कि जब हम मजहब के डोमेन में एक चीज देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इस कायनात के बनाने का, तो वो हम उसका सवाल जो है वो मजहब देता है उसके सवाल का जवाब,
जी।
तो फिर खुदा की वननेस ऑफ यानी जो तौहीद का पॉइंट ऑफ व्यू है या खुदा को किसने बनाया है, तो फिर उसका सवाल का जवाब भी तो फिर मजहब ही को देने देना, फिर उसके हवाले से मतलब साइंस अपने डोमेन से बाहर क्या निकल रही है इस तरह या नहीं?
जी ये होता रहता है काम, ये मजहबी लोग भी अपनी हदूद पार करके साइंस के डोमेन में दाखिल होते हैं, साइंस के लोग भी मजहब की डोमेन में दाखिल होते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ये हुआ है कि साइंस ने हमारी क्रैक भी की है, बल्कि साइंस ने क्या, साइंस से पहले एक फलसफी भी उसको क्रैक करते रहे हैं। जैसे कि मजहबी लोगों का ख्याल ये था, या जो स्क्रिप्चर्स के अंदर चीजें बयान हुई हैं, कि खुदा ने अपने हाथों से कोई चीज जो जानदार है आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बना दिए। तो सेंट ऑगस्टिन ने बहुत बहुत अरसा पहले ये तवज्जो दिलाई थी कि ऐसी बेवकूफी की बात नहीं करनी चाहिए, खुदा के शान शाम भी ये बात नहीं, और अकल भी इसको नहीं मानती कि खुदा टाइम और स्पेस में बैठकर जैसे कोई बड़े ही कोई चीज बनाता है या बाकी लोग बनाते हैं, उस तरह से कोई चीजें तख्लीक कर रहा है। तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से खुदा ने तख्लीक नहीं की, बल्कि इस कायनात के बाहर रहते हुए खुदा ने तख्लीक की है, जिसको अभी हम कह देते हैं कि वो जो खुदा का जो तख्लीकी हाथ जो ना नजर आने वाला है वो इस कायनात के अंदर है। तो ये जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है, देखें उसके अंदर भी यही हुआ ना कि आइडिया ये था कि बिब्लिकल जो आइडिया उसको लिटरली लिया गया कि खुदा ने अपने हाथ से बना दिया था आदम अलैहि सलाम को और बाकी जानदारों को भी शुरू में यकमुश्त बना दिया था। तो वो अब डार्विन इवोल्यूशन के नतीजे में हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक बड़ा लंबा एक प्रोसेस चला है, और खुद ब खुद ऑटोमेटेड तरीके से एक चीज दूसरे से निकलती चली गई है, और जिंदगी वजूद में जिंदगी हालतें तब्दील करती चली गई है। तो कोई बनाने वाला ना ऊपर से कोई गैबी हाथ से कोई चीज कर रहा है, ना ही अपने हाथों से कुछ बना रहा है। तो वहां से ये गड़बड़ पैदा हो गई कि जी क्या इसका, इसको कैसे समझा जाए। तो वहां से एक बिना पड़ गई, लोगों का इस पर से यकीन उठ गया कि जो मजहबी लोग जैसे कि बयान करते थे, ये ज्यादातर यानी मजहबी लोगों की अंडरस्टैंडिंग का मसला है। और फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी भी आप देखें कि बाइबल के नतीजे में, उसको लिटरल पढ़ने के नतीजे में कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ जो दुनिया है वो 10,000 साल पुरानी, तो वो इसको डिफेंड भी करते हैं, सब करते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे डोमेन में दाखिल ना हो, हमें ना बताओ कि खुदा ने ये किस तरह से चीजें तुम्हारे खुदा ने बना दी हाथों से, या ये ना बताओ कि तुम्हारी बाइबल हमें ये बताती है। कुरान के भी कुछ इशारात दिए जा सकते हैं कि लिटरल हम इस तरह से तर्जमे करना शुरू कर दें, उनके अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि भाई ये कायनात जो है वो 10,000 साल पुरानी है, या जमीन 10,000 साल पुरानी है। तो ये होता रहता है, ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि साइंटिस्ट भी जो है वो इसको जो डोमेन ऑफ साइंस है उससे निकल कर मेटाफिजिक्स में दाखिल होते हैं, और दूसरी तरफ के लोग भी ये करते रहते हैं। अब आप देखें कि वो जितना साइंटिफिक मिरेकल्स पाए जाते हैं कुरान मजीद के अंदर, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया, तो उसको आप अगर सही कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो वो बहुत सारे मिरेकल्स उस तरह मिरेकल्स नहीं रहते। कुरान मजीद को इस किस्म के मिरेकल्स नहीं चाहिए अपने अपने वो अपने मुद्दा बयान करने के लिए, उसके पास और बहुत उसने जबरदस्त किस्म के इस्तेदलाल किए हैं। इस तरह की चीजें भी हैं लेकिन वो थोड़ी हैं। अपना जो उसका इस्तेदलाल है जो अंदर से फूटता है क्योंकि उसको समझा नहीं गया, साइंस का बहुत शोर गोगा हो गया, तो साइंस के साथ मुताबिकत पेश करने की कोशिश की जाती है कुरान मजीद की, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है।